ते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे हरे श्रीचैतन्य मनोदृष्टं स्थापितं येन पूजयेत् स्वयं रूप कलामयं ददाति स्वभावितं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासदि गौरभक्तवृंदं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आज से 18 अगस्त से 16 सितंबर तक पुरुषोत्तम मास का आज आरंभ हो रहा है। आज शनिवार है और 16 अगस्त को रविवार है। इस दिन में अधिक मास पुरुषोत्तम मास मनाया जाएगा और आज से यानी शनिवार 18 अगस्त से 24 अगस्त शुक्रवार तक यहाँ पर हरिकथा सप्ताह मनाया जाएगा। हरिकथा भगवान के गुणगान के बारे में भगवान के गौरव के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो अधिक मास का कंसेप्ट है वो इस प्रकार से है कि एक है चंद्र साइकिल, इसको कहते हैं लूनार साइकिल, चंद्र महीना कह सकते, और एक है सूर्य महीना सोलर साइकिल। तो जो चंद्र महीना है वो 29.5 दिन का होता है। इसका मतलब एक चंद्र अपना साइकिल जो पूरा करता है उसको 29.5 दिन लगते हैं और जो सूर्य की परिक्रमा है उसका गणित 30 या 31 दिन का होता है। तो जब 3 साल गुजर जाते हैं तो 11 दिन का एक डिफरेंस है। जैसे कि साल भर जो होता है चंद्र का जो वर्ष होता है वो 354 दिन का होता है, 354 डेज। और जो सूर्य का वर्ष होता है सौर वर्ष कहते हैं उसको, वो 365 दिन का होता है। इस तरह से 11 दिन का डिफरेंस होता है चंद्र वर्ष में और सूर्य वर्ष में। और ये 11 दिन को अगर आप 3 साल 32-33 महीने अगर गुणित करते हैं तो ये मिलकर 30 दिन होता है। तो चंद्र और सौर वर्ष के अंदर जो अंतर है 30 दिन के इकट्ठा होकर 32 महीने के बाद अधिक मास उत्पन्न होता है, ये उसका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। जैसे एक वशिष्ठ संहिता है, वशिष्ठ मुनि ने उसको लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि 32 महीने 16 दिन और 8 घड़ी के बाद में ये अधिक मास उत्पन्न होता है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है और 60 घड़ी से एक दिन बनता है। तो अधिक मास ये जब पैदा हुआ सजीव मास की विशेषता है कि सजीव मास में मतलब आज से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य टेक्निकली किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता। अगर आप कैलेंडर देखते तो पढ़ेंगे कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, सूर्य का तुला राशि में प्रवेश होता है, इसे मकर संक्रांति है, इसे संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है, एक राशि को छोड़कर अलग राशि में प्रवेश करता है तो वो संक्रांति कहते हैं। लेकिन इस महीने में सूरज किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता है, इसलिए इस महीने में कोई भी पवित्र कार्य नहीं होता है। पवित्र कार्य का मतलब होता है जैसे कि कर्म कांड के हिसाब से ग्रह प्रवेश, विवाह, नामकरण विधि, या और कोई आपको दुकान का उद्घाटन करना है या और कोई मुहूर्त निकालना है, तो इस महीने में कोई मुहूर्त नहीं है किसी भी चीज के लिए। इसलिए कर्म कांड के हिसाब से इस महीने को यूजलेस मंथ माना गया। तो कर्म कांड क्या देखता है कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, 16 शुक्रवार करेंगे तो अच्छा पति मिलेगा, 16 सोमवार करेंगे तो अच्छी पत्नी मिलेगी, रविवार को सूर्य की पूजा करेंगे तो हेल्थ अच्छी होगी, इस प्रकार के गणित होते हैं कर्म कांड में। हर चीज फल को देखकर उसका गणित करते हैं। तो कर्म के फल के अनुसार ये जो महीना है ये बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि इसमें कोई भी कर्म कर्मकांड के हिसाब से नहीं हो सकता। इसलिए सारे देवी देवताएं और सारे कर्मठ जो कर्म करते हैं और कर्म के योग के अनुसार कार्य करते हैं फल की अपेक्षा से, उन सब लोगों ने इस महीने को त्याग दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, यहाँ तक कि इसकी निंदा भी की, क्योंकि इस मन में इसमें कोई शक्ति नहीं है, इसमें कोई फल प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसमें कोई स्वर्गवास प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया नहीं हो सकती है। कर्मकांड इसलिए होता है, आप सबको पता होना चाहिए, जितने भी पंडित लोग कर्मकांड करते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है कि यहाँ पर कर्मकांड करके इतना पुण्य कमाए कि जिससे स्वर्ग में हमको जन्म मिले। स्वर्ग में फिर नंदन वन है, अप्सराएं हैं, 56 भोग है, ऐसे फूल हैं जहां पर फूल जो मुरझाते नहीं है, बहुत सुंदर वर्णन है उसका, शरीर से बदबू नहीं आती है, केवल खुशबू आती है, एक एक कोष तक हर एक व्यक्ति के शरीर से खुशबू निकलती है। और हमारा जो इस विश्व के सबसे सुंदरी जो है इस विश्व की, ऐसे कहा गया कि वहां पर वो घोड़े की तरह दिखती है अप्सराओं के सामने। इतना सौंदर्य, इतना खुशबू, वहां पर मलमूत्र नहीं होता है शरीर में, वहां पर कोई गटर नाले ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई जरूरत नहीं। तो वहां पर जाकर इंद्रियों का भोग करने की अपेक्षा से यहाँ पर पंडित लोग पुण्य काम करने के लिए कर्म कांड करते हैं। लेकिन भगवत शास्त्र जो है वो बताता है, भगवत धर्म चिरे पुण्य चिरे पुण्य मर्त लोग के विषय थी, इसका मतलब ये पुण्य जो है इसका भी एक अकाउंट होता है। समझो आपने 1,00,000 पुण्य कमाए, फॉर एग्जाम्पल जीवन भर में बहुत सारे कर्मकांड यज्ञ अग्निहोत्र सब किया, अभी और दान धर्म किया, किसी को अच्छा किया, अंधों को चश्मा बांटा और गरीबों को नोटबुक बांटी, भूखों को खाना खिलाया, ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं, पुण्य कार्य हैं, उसका एक अकाउंट जमा हो जाएगा और मृत्यु के समय वो अकाउंट जो है वो आपको स्वर्ग में जन्म दे जाएगा। लेकिन स्वर्ग में जितना जीवन प्राप्त होता है उतना, जितना एक एक क्षण में आप आनंद लोगे उतना आपका पुण्य का अकाउंट खत्म हो जाएगा। यदि तक बैंक बने, सफर बैंक में पैसा भरेंगे 10 करोड़ रुपया भर देंगे समझो मैक्सिमम, जैसे खर्च कर जाएंगे तो खत्म हो जाएगा ना, वो बढ़ेगा नहीं, वो थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा, धीरे 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 वो बैंक अकाउंट जीरो हो जाएगा अगर आप उसमें भर्ती नहीं करेंगे। तो स्वर्ग में पुण्य कर्म में नहीं भर्ती नहीं होती है, जो पुण्य कर्म है उसी पर जीवन चलाते हैं। और धीरे धीरे जब ये पुण्य कार्य खत्म हो जाते हैं तो क्षीण पुण्य मतलब जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, संख्या कम हो जाती है, मर्त्य लोके विशन्ति, पुनः पृथ्वी पे आके जन्म लेना पड़ता है। जैसे आप कहीं भी घूमेंगे तो वापस बेस पे आना पड़ता है, अगर आप बिल्डिंग के सातवें मंजिल पर जाएंगे या दूसरे बेसमेंट पर जाएंगे, बाहर निकलना हो तो फिर आपको ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा। कहीं भी घूमो ग्राउंड फ्लोर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो अपना जो अर्थ है वो ग्राउंड फ्लोर की तरह, यहाँ पर से नियम निर्णय होता है कहाँ जाना है, नहीं रहना है, नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, कौन से स्वर्ग में जाना है, कौन सा पुण्य कर्म करना चाहिए उसके लिए, वो सब गणित यहाँ पर होगा। लेकिन भागवत धर्म बताता है कि क्योंकि ये सारे पुण्य और पाप दोनों नश्वर है, खत्म होने वाले हैं, इसलिए उस पर भागवत धर्म पालन करने वाले लोग जो है विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको वो चीज चाहिए जो परमानेंट हो, वो चीज नहीं चाहिए जो परमानेंट नहीं है। इसलिए भक्त जो होते हैं वैष्णव जन, वो पुण्य कर्म इकट्ठा करने के पीछे लगते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि पाप और पुण्य ये दोनों इक्वली खराब है। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य दोनों हमको दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। अगर आपका सब ऐसे कहा गया जमुना जी में स्नान करेंगे वृंदावन में, तो पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जब ऐसा कहा तो कुछ भक्त लोग जमुना जी में स्नान कर रहे थे ऑलरेडी, तो उन्होंने स्नान करते करते सुना कि जमुना जी में स्नान करने से वृंदावन में पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ लोग भक्त झट से भाग के बाहर आ गए जमुना जी से, उन्हें पुण्य में नष्ट हो जा रहे हैं। फिर उनको समझाया प्रभुपाद जी ने, जो पुण्य है ये मत समझना कि वो अच्छा है, पाप खराब है, क्योंकि वो कष्ट देगा, पीड़ा देगा, या नरक में जन्म देगा, वहां पर कष्ट भोगना पड़ेगा, और पुण्य से आनंद मिलेगा। लेकिन हमको जानना चाहिए कि पाप और पुण्य दोनों ही बांधने वाला है, बंधन कारक है, दोनों हमको जन्म मृत्यु की श्रृंखला में बांध देता है। इसलिए ऐसा कहा गया कि कम से कम पाप करेंगे तो उसके दुख भरे फल से हम लोग जागरूक हो जाएंगे, कष्ट पाएंगे तो थोड़ी मति हमारी जागरूक हो जाएगी, लेकिन पुण्य करके जो भोग प्राप्त करेंगे उसको भोगने में हमारी मति जो है वो मजगर हो जाएगी और भगवान को हम भूल जाएंगे। इसलिए पाप से भी पुण्य ज्यादा खराब है, क्योंकि पुण्य भगवान को भुला देता है, पुण्य हमको ऐसा भोग देता है जो इंद्रियों को इतना वश कर देता है कि हमारी चेतना जो है भगवान को तुरंत भूल जाती है, दूर कर जाती है। तो ये जो पाप पुण्य का हिसाब है जो समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर 99.9999% लोग जो है ये पुण्य कमाने के पीछे लगे हुए, लेकिन बुद्धिमानी की और समझदारी की बात यह है कि पाप और पुण्य दोनों बंधन कारक है। इसलिए भक्त को कभी भी पाप और पुण्य को इकट्ठा करने में नहीं लगना चाहिए, भक्त को केवल आध्यात्मिक उन्नति इकट्ठा करने में लगना चाहिए। अ डिवोटी मस्ट ओनली वर्क हार्ड टू एक्यूमुलेट स्पिरिचुअल क्रेडिट्स, क्योंकि स्पिरिचुअल जो क्रेडिट होता है वो पुनः हमको जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं बांधता। आध्यात्मिक उन्नति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। इसलिए ये जो अधिक पांच का जो फंडामेंटल पॉइंट है, हाँ, तो बेसिक मुद्दा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अधिक मास में कोई भौतिक पुण्यकारी लाभ नहीं होता है। अभी समय की बात ऐसी है कि समय ऐसा होता है कि समय इस दुनिया में सबसे पावरफुल शक्ति है। टाइम आई एम कृष्णा सेल्स डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल, सब चीज को मैं नष्ट कर देता हूं समय के रूप में। सबसे बड़ा जो भगवान का यहां पर अस्तित्व है, चाहे भक्त हो या नहीं भक्त हो, उस पर वो परिणाम करता है, वो है समय। क्योंकि समय के रूप में भगवान हमसे सब कुछ छीन लेते हैं, हमारी जवानी, हमारी धन दौलत, हमारी शक्ति बल, हमारी फेम, हमारा अस्तित्व, हमारा हेल्थ, सब कुछ समय के साथ नष्ट होता है। जो आज है वो कल नहीं दिखाई पड़ता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इस समय का जो प्रभाव है वो बहुत तेज है, क्योंकि स्वयं समय स्वयं कृष्ण है, और ये समय इस पर हम लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत लोग चाहते तो हैं कि हम जवानी रहे, 16 साल की उम्र के रहे, लेकिन कोई रहता नहीं। जितना भी योगा करेंगे, जितना भी मेहनत करेंगे, जितना भी दवाई खाएंगे, जड़ी बूटी, हाँ, हिमालय में जाके योगासन करके आएंगे, कायाकल्प करेंगे, फिर भी शरीर वृद्ध होगा ही, शरीर को बीमारी होगी ही, और एक दिन मृत्यु जरूर आएगी आएगी। तो समय का प्रभाव, इसलिए ऐसे कहा गया कि अगर समय से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है समय के प्रभाव से, तो समय के साथ साथ चलना होगा, समय के खिलाफ नहीं चल सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग हवाई जहाज में, सॉरी बोट में जा रहे हैं समुद्र में, तो नाविक क्या करता है, अपना जो कपड़ा होता है ना, कपड़ा तो क्या कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड, हाँ मतलब, हाँ हाँ, वो उसको शीड कहते हैं मराठी में, हाँ, उसको हवा की दिशा में करता है और उस हवा की गति का लाभ लेकर अपनी बोट की प्रगति करता है। उसका आइडिया ऐसा है, वो जो इतना बड़ा लंबा लगता है ना, वो क्यों लगाते हैं, ताकि जहां हवा पर है उसको वो टर्न कर देते हैं और फिर हवा की गति से बोट आगे बढ़े। मतलब जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में नाविक उसका लाभ, उस गति का लाभ लेकर, उस फोर्स का लाभ लेकर अपने आप की नाव की प्रगति करता है। उसी तरह से मनुष्य जीवन का ये जो पर्पज है जिसमें हम जी रहे हैं, समय के जो प्रभाव है उसको समझते हुए उसके साथ साथ चलना चाहिए। अब मैं कैसे समझाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे का दिन, उसके अंदर सुबह का समय जो है वो सबसे पवित्र माना गया है, उसको राम प्रहर कहते हैं 3 से 6, और ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्योदय के पहले का 1 घंटा समय, तो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो वो जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, वो भगवान के नाम के भजन के लिए, पूजा अर्चना के लिए, एकाग्रता के लिए, समर्पण करने के लिए अनुकूल माना गया। जैसे ही सूर्य ऊपर आता है तो रजोगुण शुरू होता है, उसको अभी फोन आने लगते हैं, मोबाइल्स, दरवाजे पर रिंग बजती है, दूध वाला आता है, और कोई आता है और के मिलने आता है, और गतिविधियां शुरू हो जाती है, अपना किचन शुरू हो जाता है, कोई किस दुकान पे जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है। आप देखेंगे सूरज के ऊपर आते ही सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इसका मतलब रजोगुण, दुनियादारी की जो एक्टिविटीज है, धन कमाना है, बिजनेस करना है, कुछ और करना है, तो भी भाग जाते हैं। तो अंधेरा होता है तो तमोगुण शुरू हो जाता है, और अंधेरे होने के बाद में एक होता है 6 से 9 का प्रहर, दूसरा होता है 9 से 12 का प्रहर, और तीसरा होता है राक्षस प्रहर 12 से 3। उसके अंदर सब गलत काम होते हैं, हाँ, बलात्कार, रेप, डकैती, दारू, शराब, हाँ, जो भी डांस करते हैं, क्या वेश्या व्यवसाय जो भी होता है वो सब रात को होता है, खून खराबा सब रात को होता है। 9 से 12 गृहस्थ लोग जो है अपने परिवार के आनंद के लिए बच्चे पैदा करने में बिजी हो जाते हैं, और 6 से 9 में उसकी तैयारी करने में व्यस्त होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में 24 घंटे के 8 प्रहर में जो सुबह का प्रहर है वो भजन के लिए अनुकूल माना गया। वैसे भजन में कोई नियम नहीं है, तत्काल पिता नियमिता स्मरण न काला, इसमें कोई समय का बंधन नहीं है। फिर भी ऐसा होते हुए भी 8 प्रहरों में से सबसे अनुकूल प्रहर सुबह का है। ये दिन की बात हुई, अभी अगर 15 दिन की बात करेंगे एक पक्ष की, यानी कि फोर्टनाइट की बात करेंगे, तो एकादशी का दिन उसमें पवित्र माना गया, क्योंकि एकादशी के दिन हमारी चेतना जो है वो भगवान के निकट रहती है। अवर कॉन्शियसनेस इज वेरी क्लोज टू द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, उसका लाभ लेते हुए हम लोग थोड़ा सा अन्न वर्ज कर देते हैं, फलाहार करते हैं, और बहुत से अधिक भगवान के नाम का जप लेते हैं। तो पूरा दिन उसमें भी एकादशी का जो प्रथम पैर है बाकी एकादशी के पैरों से अधिक प्रभावशाली होगा, लेकिन फिर भी 15 दिन में एक दिन एकादशी का भगवान के भजन के लिए बहुत अनुकूल माना गया, महीने में 2 दिन होते हैं। अभी आप साल के देखेंगे क्योंकि दिन में प्रथम प्रहर, महीने में 2 दिन, और साल में 12 महीने में बहुत सारे पवित्र महीने हैं। चैत्र का महीना पवित्र माना गया है, वैशाख भी पवित्र माना गया है, फिर माघ महीना भी बहुत पवित्र माना गया है। मार्गशीर्ष उसमें कहते हैं कि मासाना मार्गशीर्ष हो, मार्गशीर्ष में स्वयं मार्गशीर्ष हूँ, तो कार्तिक के बाद में। लेकिन फिर भी इन 12 महीनों में चंद्र गणित के अनुसार जो 12 महीने हैं ना, चैत्र वैश्य ज्येष्ठा आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, इस 12 महीनों में 4 महीने सबसे पवित्र माने गए, वो है चतुर्मास, आषाढ़ और श्रावण और भाद्रपद और कार्तिक, जिसमें अश्विन भी आता है, लेकिन हमारा जो गणित है वो आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होता है, आषाढ़ के पहले दिन छोड़ के जो अगले दिन है 15 दिन के बाद में, आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक, ये वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है चतुर्मास का। और जो स्मार्थ वैष्णव होते हैं वो आषाढ़ एकादशी लेकर कार्तिक उदय चतुर्मास में आते हैं, मतलब एक बड़ी डिफरेंस। तो ये 4 महीने बहुत पवित्र माने गए, इस महीने में बहुत व्रत करते हैं लोग, भगवान के लिए पूजा अर्चना करते हैं, उपवास करते हैं, धाम की यात्रा करते हैं, नियम पालन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। लेकिन इन 4 महीने में भी कार्तिक का महीना बहुत पवित्र माना गया, जैसे कि भगवान का एक लॉटरी सेल लगाया भगवान, इस महीने में जो भी कुछ करेंगे भगवान के लिए उसका 1000 गुना लाभ मिलेगा आपको। तो ये अंडरस्टैंडिंग है समय का। तो अभी आपको कैसे चलना चाहिए, भगवान के दिए हुए जो समय के अलग अलग प्रभावशाली टाइम्स हैं उसमें रहकर, उस समय जगह रहकर भगवान को पूजना चाहिए। जैसे अगर जप करना ही है तो रात को 11 बजे करने के बदले में सुबह करना चाहिए। रात को 11 बजे करने से वही मंत्र है, वही आप हो, लेकिन समय अनुकूल नहीं है, ध्यान लगता नहीं है, थकान आ जाती है, नींद आ जाती है। उसमें और एक प्रिंसिपल भी है कि जब हम सबसे अधिक फ्रेश रहते हैं तो पहले भगवान का नाम जप करना चाहिए। जब नींद से उठ के आराम करके रेस्ट लेके फ्रेश हो जाते हैं तो सबसे पहले स्नान करके समय भगवान को देना चाहिए, जो बेस्ट समय है। ऐसा नहीं कि दुनियादारी के स्वार्थ के सब सारे काम करने के बाद में रात का जो वर्स्ट समय है, तो थकान से भरा हुआ है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रतिकूल समय है, वो समय भगवान को देने, वो बुद्धिमानी का काम नहीं। इसी तरह से महीने में अगर समय देना है तो एकादशी सबसे अनुकूल है, साल में देना है तो चार महीने अनुकूल है, और चार महीने में कुछ अनुकूल देना है अनुकूल उत्तम वो कार्तिक का मास। और ये अधिक मास जो है ये चतुर्मास से भी और कार्तिक मास से भी अधिक पवित्र माना गया। कार्तिक मास में जो भगवान का भजन पूजन करते हैं उससे 1000 गुना बेनिफिट आध्यात्मिक लाभ कार्तिक मास का पालन करने से होता है, अधिक मास का पालन करने से। तो ये अधिक मास का महात्म्य है, अभी आपको हम विस्तार में समझाएंगे कि अधिक मास कितना पावरफुल चीज है। भगवान ने जीव के लिए उनके पास पहुंचने के लिए इतनी आसान सुविधाएं बना के रखी है, ऐसा नहीं कि उन्हें मुश्किल करके रखा है। अरे जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, बुढ़ापा है, बीमारी है, हाँ आदि भौतिक क्लेश है, आदि आत्मिक क्लेश है, नैसर्गिक क्लेश है, कितना कष्ट यहाँ पर है, जीना कितना मुश्किल हो गया है, ये तो बात सही है, लेकिन उसमें भी भगवान ने उन तक पहुंचने का, इससे मुक्त होने का बड़ा आसान रास्ता बना के रखा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, ध्यान धारणा, यज्ञ करना, मंदिरों की पूजा करना सब कैंसिल कर दिया। कलयुग में केवल सबसे आसान तरीका हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं, परिवार को त्याग करके, धन दौलत त्याग करके विरक्त होकर कहीं जाने की जरूरत नहीं, गुफा में रहने की जरूरत नहीं, परिवार के साथ में रहकर अपना धन दौलत बिजनेस नौकरी धनार्जन करते हुए हम भगवान के नाम का उच्चारण करके भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते, आसान बना दिया। साथ साथ में ऐसे ऐसे मौके देके रखे हैं जिसका अगर हम बुद्धि से लाभ लेंगे तो हम तुरंत भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। उसमें से अधिक मास है, उसके पहले कार्तिक मास है, उसके बाद में अधिक मास। कार्तिक मास हर साल में आता है, हर 12 महीने में एक बार आता है, अधिक मास 32 महीने के बाद एक बार आता है। तो जब ये पैदा हुआ तब ये देवताओं ने और सब ऋषि मुनियों ने कर्म प्राणी उसको त्याग कर दिया, उसके लिए अपशब्द कहे, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अधिक मास की जो देवी है बहुत दुखी हो गई, क्योंकि हर एक मंथ जो है वो किसी किसी देवता ने अडॉप्ट करके रखा है। हर एक महीने के कुछ देवता होते हैं, वो उसके पति के रूप में माना जाता है, उसको आश्रय मिला हुआ है और उस पति की कृपा से उस महीने में जो जो कुछ कोई करेगा उसका लाभ मिल जाता है। लेकिन अधिक मास का कोई वाली नहीं था, कोई रखवाला नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई स्वामी नहीं। तो अधिक मास बहुत रोया, बहुत रोई देवी और रो कर विष्णु के पास गई, जनार्दन स्वामी विष्णु, और उन्होंने बहुत रुदन किया कि मुझे सब लोग त्याग दिया है, सब लोग ने अपशब्द कहे हैं और मुझे कोई वाली नहीं है, मेरा कोई स्वामी नहीं है और मुझे इतना खराब समय मिल गया है, मैं इतनी दुखी हूं कि मुझे जीवित रहने का कोई इच्छा नहीं है। तीन बार कहा मैं मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू डाई। उस समय जनार्दन स्वामी विष्णु ने उनको कहा कोई चिंता मत करो, आपका जो दुख है उसका निवारण परम भगवान गौलोकेश्वर श्री कृष्ण भगवान करेंगे। तो वो उनको अपना ब्रह्मांड जो है श्वेत द्वीप, वहां पर जो एक ब्रह्मांड में हमारे भी एक वैकुंठ होता है उसका नाम है श्वेत द्वीप, और 14 भुवन है वहां पर, 7 स्वर्ग लोक है, पृथ्वी लोक है, 6 नरक लोक है और उसके साथ साथ एक श्वेत द्वीप है यहाँ का वैकुंठ। तो ये ब्रह्मांड पार करके अपने हाथ में हाथ पकड़कर विष्णु ने देवी अधिक मास की देवी को गौलोक धाम ले गए, ब्रह्मांड पार करके, फिर विरजा पार करके, ब्रह्म ज्योति पार करके, वैकुंठों को पार करके जो सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ है गौलोक धाम, वहां पर उन्होंने प्रवेश करवाया। गौलोक धाम में पहुंचते ही उसके दिव्य प्रकाश से अधिक मास देवी की आंखें चौंधिया गई और फिर भगवान के पास उनको ले गए। स्वयं विष्णु ने कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया और उस समय अधिक मास की देवी रो रही थी तो कृष्ण भगवान ने कहा यार दो लोग पहुंचने के बाद रोना क्यों? तो कृष्ण भगवान ने समझाया, बताया उनको, वर्णन किया क्यों रो रही है। उस समय तुरंत दयालु भगवान ऐसे है का सार ऐसा है कि अगर हम सच्चे हृदय से, शुद्ध हृदय से, निरपेक्ष हृदय से, प्रामाणिक हृदय से, अगर हमारे मन में कोई इच्छा भी हो रही है, प्रामाणिक हृदय से परम भगवान के पास जाइए तो हमारा काम हो जाएगा। भगवान क्या कहते हैं, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो व उदाहरण तीव्र भक्ति योग। मतलब क्या, अगर हमारे मन में अनंत इच्छाएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये प्राप्त होना है ये प्राप्त होना है, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, सर्व काम मतलब अनंत हमारे मन में इच्छा है, या हमारे मन में मोक्ष काम यानी कि मोक्ष की इच्छा है, उनको याद रहना नहीं हमको मोक्ष अगर वैकुंठ में जाना, या हमारे मन में अकाम यानी कोई इच्छा ही नहीं, निष्काम है बिल्कुल, भगवान कहते हैं इन तीनों अवस्था में, इच्छा होने की अवस्था में या न इच्छा होने की अवस्था में या मोक्ष की इच्छा होने की अवस्था में मुझे ही प्रणाम करो, मेरे ही पास आओ, क्योंकि सर्व काम की अवस्था में भी आपके लिए जो अच्छा है वो मैं करूंगा, आपको इच्छा नहीं है फिर भी आपके लिए जो अच्छा है वो मैं करूंगा, इन तीनों अवस्था में आपके कल्याण का कार्य मैं करूंगा। देवताओं के पास जाएंगे तो जितना हिसाब किताब है उतना उसका फल देंगे, उनको अधिक अथॉरिटी नहीं है, जेलर की अथॉरिटी कितनी होती है, आपको जेल में वो एसी लगा सकता है, पैसा होटल खाना मंगा सकता है, आपके जेल में लकड़ी के तख्त के बजाय में गद्दी लगा सकता है, लेकिन वो जेल से आपको मुक्त नहीं कर सकता, तो देवता लोग की जगह की तरह होते हैं, उनके हाथ में लिमिटेड पावर होती है, वो भी भगवान की दी हुई होती है, इसलिए कभी भी अपनी इच्छाओं को लेकर भले मोक्ष की हो या भौतिक इच्छा हो उसको लेकर देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, लेकिन उनके पास अथॉरिटी लिमिटेड होती है, भगवान की दी हुई होती है लेकिन लिमिटेड होती है। एक ही व्यक्ति है जो मोक्ष देने की योग्य है, उसका नाम है मुकुंद, और वो है श्री कृष्ण भगवान, वही हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए विष्णु भगवान अधिक मास की देवी को लेकर कहा गए श्री कृष्ण भगवान के पास, और श्री कृष्ण भगवान ने प्रामाणिक हृदय से किया हुआ जो रुदन है, मतलब रोई ना देवी, उतने अश्रु बहाए भगवान के, और कहा कि भगवान हमें आश्रय दीजिए। भगवान ने तुरंत इस देवी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर दिया, तो आज से आपका स्वामी मैं हूं, और जो मैं हूं पुरुषोत्तम, जो ये पद मुझे प्राप्त है पुरुषोत्तम का, तो सारी ऐश्वर्य कलाएं शक्तियां मुझसे ही निकलती, सारे ब्रह्मांड मुझसे निकलते हैं, और ये मेरा जो पुरुषोत्तम का पद है वो भी मैं आपको प्रदान करता हूं, इसलिए आपका नाम भी पुरुषोत्तम नाश हो जाएगा, और जो मेरा गौरव है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, जो मेरी शक्तियां हैं वरदान देने की, आध्यात्मिक वरदान देने की, वो सारी वरदान देने की शक्तियां आपको प्राप्त हो जाएगी। तो एक झटके में जब देवताओं ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, एकदम सर्वशक्तिमान हो गया भगवान, सभी देवी देवता है, ब्रह्मा तक, ब्रह्मा ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो ब्रह्मा से लेकर सारे देवताओं ने तुरंत उसको स्वीकार कर दिया और इसका पूजन आरंभ किया। तो भगवान ने थोड़ा अंधेरा हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा लाइट मिल जाएगा, तो भगवान ने कहा कि अतन मासादि पश्चाहम मय वयम प्रतिष्ठित पुरुषोत्तमेति मन्नाम तदपि अस्मै समर्पितम्। उन्होंने कहा कि ये जो मास जो है ये मेरा ही हो जाएगा, मेरा नाम पुरुषोत्तम है तो मन नाम मेरा नाम उसको प्राप्त हो जाएगा, और इस तरह से मुझे कोई समर्पित हो जाएगा और मुझ में इस मास में कोई अंतर नहीं रहेगा। इस तरह से भगवान ने इस महीने को अनंत वरदान दिए और कहा कि इस वरदान को, इस महीने के व्रत को जो पालन करेगा वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा, बाकी महीनों में जो व्रत करेगा वो स्वर्ग को प्राप्ति करेगा। मैंने पहले आपको समझा दिया कि स्वर्ग जाने में क्या होता है, बहुत लंबा समय होता है, लेकिन स्वर्ग जाने के बाद उस लंबे समय के बाद में पुण्य खत्म होकर दोबारा आना पड़ता है, लेकिन भगवान ने इस पुण्य पुरुषोत्तम मास को वरदान दिया कि इसमें जो भी कुछ व्रत करेगा हरे कृष्ण
よ。
よしよし、金でこれ。
This guy's that one.
Hare Krishna. What are you doing? Hare कहा कि इस महीने में जो भी व्रत रखेगा उसको मैं सारे पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, उसके सारे पाप नष्ट करूंगा, और जो भी आप इस महीने में कोई तपस्या करी, कोई नियम पालन करता है, कोई व्रत रखता है, उसको मैं इतना फल दूंगा कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दूंगा और अपने दोनों धाम में निवास दूंगा। तो वैष्णव प्रणाली का नाम का एक शास्त्र है, उसमें कहा गया है कि इस महीने में क्या क्या करना चाहिए। इस महीने में सारे वृंदावन में आप जाएंगे या किसी तीर्थ में जाएंगे तो सारे वर्ष में जितने भी उत्सव होते हैं वो एक साल में एक महीने में मनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जन्माष्टमी मनाते हैं, राधाष्टमी मनाते हैं, झूले यात्रा मनाते हैं, और जो भी ढोल यात्रा, रथ यात्रा, जो भी होता है पूरे साल में, चैत्र से लेकर फाल्गुन तक, वो सारे उत्सव एक महीने में लगातार वन बाय वन मनाते, क्योंकि इसको अधिक सेवा देते हैं भगवान। इस महीने में उत्सव मनाने की अधिक सेवा भक्तों को देते हैं। और जो जन्माष्टमी का उत्सव या और झूले यात्रा का उत्सव और कोई उत्सव मनाते हैं हम लोग, उसका जो लाभ है उससे हजार गुना लाभ उसी उत्सव को दोबारा अधिक मास से मनाने से होता। इसलिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे उत्साह के साथ में इस महीने में व्रत रखना बहुत जरूरी है। तो इसकी कहानी ऐसी है, बड़ी सुंदर कहानी है। इस कहानी को बताने के बाद में हम आपको बताएंगे कि कैसे व्रत रखना है। तो कहानी ऐसी है कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवतम सुनते श्रीमद् गोस्वामी नैमिषारण्य में आए। नैमिषारण्य ये पृथ्वी का आस है, इट्स व्हाट यू कॉल्ड, हां व्हाट इज कॉल्ड, नहीं नहीं, सेंटर ऑफ यूनिवर्स, इट्स लाइक कैसे बताएं इसको, आस कहते हैं मराठी में, नहीं नहीं, सेंटर ऑफ यूनिवर्स, फाइन। तो वहां पर 88,000 साधु इकट्ठा हुए और इनके सभा में वो चिंतित थे कि भौतिक दुनिया में कलयुग आ रहा है, कैसे होगा, लोगों का उद्धार कैसे होगा। यज्ञ करने के लिए इकट्ठा हुए थे, वहां से श्रुत गोस्वामी आते हैं, इन्होंने सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवतम अभी अभी सुना है। तो हस्तिनापुर से आ रहे थे और हस्तिनापुर ये कौरवों का राजधानी था और वो गंगा नदी के किनारे था, और उसी हस्तिनापुर में गंगा नदी के किनारे सुखदेव महाराज जी ने परशुराम महाराज को 7 दिन तक भागवत सुनाया। तो सब लोग श्रुत गोस्वामी को वंदन करते हैं और शौनक ऋषि के नेतृत्व में श्रुत गोस्वामी को विनती करते हैं कि जन सामान्य के कल्याण के लिए आप हमको कुछ बताइए कि ऐसा क्या किया जाए जिससे जन सामान्य अपने कष्ट से मुक्त हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं भागवत सुन के आया हूं, तो भगवान की जो कथा है ये जन सामान्य के लिए कल्याणकारी है। उद्धव जी ने भी, जब उद्धव जी भगवान को पूछते कि आपके अभी जाने का समय आ गया, तो आप जाने के बाद विश्व का कल्याण कैसे होगा। भगवान कहते कि श्रीमद् भागवत ये मेरा ही स्वरूप है, मैं जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत प्रकट हो जाएगा और यही मेरा स्वरूप रहेगा, मेरा अंग रहेगा। और श्रीमद् भागवतम ध्वनि के रूप में रहेगा, श्लोकों के रूप में रहेगा, लेकिन वो ध्वनि जब सुनेंगे कोई, ग्रहण करेंगे, तो वो मेरे अस्तित्व का अनुभव करेंगे, दे विल एक्सपीरियंस माय प्रेजेंस। तो कृष्ण कथा जो है ये जीव के लिए बहुत कल्याणकारी है। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में ये वर्णन आता है कि कृष्ण कथा, हरि कथा जो है ये जीव के लिए परम कल्याणकारी क्यों है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के बंधन से उसको मुक्त कराती है। तो इसलिए जब ये पूछते हैं सारे साधु लोग श्रुत गोस्वामी को कि हमें ऐसा का उपाय बताइए जो संक्षिप्त हो और सर्वश्रेष्ठ हो और वो कोई भी कर सकता है, ऐसे ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही कर सकते हैं, तो पढ़े लिखे वही कर सकते हैं, जो शास्त्र पढ़े हैं संस्कृत जानते हैं वही कर सकते हैं, तो सबका उद्धार नहीं हुआ, एक क्लास का ही उद्धार होगा, बाकी सब लोग ऐसे रह जाएंगे। तो ऐसे हमको उपाय बताइए जो हर एक व्यक्ति उसको फॉलो कर सकता है। तो एक विधि बताया भगवान के नाम के जप, तो भगवान का नाम का जप जो है, जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं या राम का नाम जप सकते हैं और भी विष्णु भगवान का नाम जपते हैं, वो बालक भी कर सकता है, हाँ बुढ़ा भी कर सकता है, सुंदर व्यक्ति भी कर सकती है और पूर्व व्यक्ति भी कर सकती है, काले रंग की कर सकती है, गोरे रंग की व्यक्ति भी कर सकती है, मतलब वर्ण की भेद की जरूरत नहीं है, जाति की भेद की जरूरत नहीं है, भाषा की भेद की जरूरत नहीं है, ज्ञान की भेद की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ा लिखा है कोई अनपढ़ है, कोई बीमार है तो कोई आरोग्य संपन्न है, तो किसी भी अवस्था में भगवान का नाम का जप कर सकते हैं, वो विधि बताई उन्होंने। और उसके बाद में उन्होंने अधिक मास की कहानी बताई, वो कहानी इस प्रकार से, पहले आपको ये बताई कहानी, तो कैसे अधिक मास विष्णु के पास गए और उन्होंने वो वरदान प्राप्त किया और पुरुषोत्तर नाम की संज्ञा नाम प्राप्त किया। तभी श्रुत गोस्वामी आगे की कहानी बताते, वो कहते हैं मेरे पास नारद मुनि की कहानी है, नारद मुनि बद्रिकाश्रम गए और बद्रिकाश्रम में भगवान के अवतार नर नारायण ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे थे। आप बद्रीनाथ में गए होंगे ना, बहुत सारे लोग बद्रीनाथ में, दो बड़े बड़े पर्वत हैं, एक साइड में नर पर्वत एक साइड नारायण पर्वत और बीच में बद्रिकाश्रम का मंदिर है। तो नर जो है वो अर्जुन स्वयं अर्जुन है और नारायण स्वयं कृष्ण है। जब भगवान को तपस्या करने का मूड आता है तो वो बद्रिकाश्रम जाते हैं, तो भगवान को खेलने का मूड आता है तो कहां जाते हैं, सिर्फ वृंदावन में जाते हैं। जब भगवान को भोजन करने का मूड आता है तो कहां जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं। जब भगवान को राजनीति करने का पॉलिटिक्स करने का इच्छा होती है तो कहां जाते हैं, द्वारका में हस्तिनापुर में जाते हैं। और जब सोने का दिल करता है तो कहां जाते हैं, तिरंगम में जाते हैं सोने के, हमें सोते रहते हैं वहां पर, बहुत सारे विग्रह वहां पर सोते रहते हैं। तो वैसे नर नारायण ऋषि जब भगवान को तपस्या करने का मूड आता है तो नर नारायण ऋषि बन के वो हिमालय में जाते, तो वहां पर नारद मुनि नारायण ऋषि को मिलते हैं और पूछते हैं कि जन सामान्य के कल्याण के लिए, हाँ यही बातें हो रही है, वही प्रश्न जो नैमिषारण्य के साधुओं ने पूछा वही प्रश्न नारद मुनि करुणा के वजह से, नारद मुनि बहुत करुणा वाले हैं, हमेशा बद्ध जीवों के बारे में सोचते रहे, ये जो बद्ध जीव भगवान को छोड़कर इस दुनिया में जन्म लेकर जी रहे हैं, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा इसका कष्ट भोग रहे हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। जब भगवान ने जगन्नाथ का उदाहरण कर लिया, तुरंत वरदान मांग लिया कि आप जगन्नाथ के रूप में आओ और आपका दर्शन करके सबको मुक्ति मिले, प्रेम प्राप्त हुआ आपका। वैसे ही फिर बुधवार पूछ रहे नारायण ऋषि को, नारायण ऋषि ने कहा कि मैं आपको अभी वो कहानी सुनाऊंगा जो कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। तो वो अभी नारायण ऋषि नारद मुनि को वो कहानी बता रहे हैं कृष्ण भगवान की। तो कहानी है, पहले संवाद हो रहा है शुद्ध गोस्वामी और नैमिषारण्य के साधुओं के बीच में, उसमें वो कहानी बता रहे हैं नारद मुनि के नारायण ऋषि के संवाद की, और नारायण ऋषि बता रहे हैं कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को क्या बताया। तो ये बता रहे हो कि पांडव लोग जुए में से हार गए, तब राज्य गया, तो उसके बाद में वनवास हो गया उनको, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास है। तो 12 वर्ष के वनवास में वो वृंदावन के काम्यवन में गए। आप लोग काम्यवन गए हो कोई, वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम में जो 12 वन है उसमें सबसे श्रेष्ठ वृंदावन है और वृंदावन के बाद में सबसे प्रिय भगवान को काम्यवन है, उसको प्रति वृंदावन कहा गया। बहुत सुंदर लीलाएं हैं भगवान के वहां पर, बहुत बहुत सुंदर, 1000 कुंड है, 9 कुंड परशुराम जी ने बनाए, तो उसमें एक कुंड जो है वो पांडव कुंड है, उसको हम मिश्र कुंड कह सकते हैं। वहां पर वन में वो वनवास बिता रहे, तो भगवान कृष्ण उनकी याद करके द्वारका छोड़कर वहां उनको मिलने जाते और उनकी कष्ट भरी अवस्था देखकर उनको बहुत कौरवों पर गुस्सा आ रहा है, खासकर के दुर्योधन को, और क्रोध करके वो इतने क्रोध करते हैं कि विश्व को नष्ट करना चाहते। उस समय भगवान को मीठे मीठे वचन अमर वचन बोलकर युधिष्ठिर सांत्वना देते हैं और शांत करते हैं। भगवान को बोलने कोई जरूरत नहीं है, भगवान पर अपने भक्तों पर अपना प्रेम दिखा रहे, इतना प्रेम करते हैं भक्तों, और भक्तों को कष्ट देकर उनको बहुत क्रोध आता है, इसलिए भक्तों को कभी भी पीड़ा और कष्ट देना नहीं चाहिए। क्योंकि उससे भगवान को होता है क्रोध। और फिर वो हिरण्यकश्यपु जैसे मारने के लिए आए थे, नरसिंह भगवान को भयंकर रूप धारण करके वैसे आते हैं और छोड़ते नहीं उन लोगों को जो भगवान के भक्तों को कष्ट देता है। तो वैसे भगवान ने क्रोध किया, महाराज युधिष्ठिर ने शांत किया उनको। फिर महाराज ने एक कहानी बताई अधिक मास की युधिष्ठिर महाराज, और वो कहानी बताने के बाद में कहा कि अभी मैं आपको द्रौपदी की पूर्व जन्म की कहानी बताता हूं कि द्रौपदी पूर्व जन्म में एक गरीब कन्या थी, उसकी माता बड़ी भक्त थी भगवान, लेकिन बहुत कम उम्र में उसकी माता का ध्यान हो गया। पिता पहले ही चले गए, उसकी माता चली गई और ये बिल्कुल अनाथ हो गई। तो बहुत रोई वो कन्या, बहुत ही रोई, ब्राह्मण थी वो, बहुत रोई बहुत रोई। फिर दुर्वासा मुनि वहां आए उसकी अवस्था को देखकर, और दुर्वासा मुनि इस कन्या को पूछा तुम्हारा क्या कष्ट है? उनका मैं इतनी दुखी हूँ, मेरे माता नहीं पिता नहीं, मैं अकेली हो गई हूँ, पता नहीं मेरा विवाह कौन करेगा मुझे, साथ मेरा उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कोई चिंता मत करो, अधिक मास का व्रत करो, पुरुषोत्तम मास का व्रत करो। इस मास में व्रत करने से तुरंत भगवान परम भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते और वो सब दुखों से तुम्हारी मुक्ति कर देंगे, और साथ साथ में जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्ति दिलाकर अपने धाम में आपको लेके जाएंगे। तो छोटी सी कन्या को दुर्वासा मुनि के इस शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ, शी कुड नॉट बिलीव दुर्वासा। तो कहते हैं कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, मुझे आप जो कह रहे हो उस पर विश्वास नहीं है। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि अधिक मास और पुरुषोत्तम मास, इसके बारे में जो अविश्वास दिखाएगा वो नरक का भागीदार होगा। अगर आप अधिक मास पर अविश्वास दिखाते हो, उस पे जो बेनिफिट्स है, लाभ है उसके, उसको मानते नहीं है हा? और रिजेक्ट करते हैं उसको, तो वो व्यक्ति केवल नरक में यातना भोगने के लिए योग्य बन जाता है। तो नारद मुनि उनको ये भी समझाता है, दुर्वासा मुनि ये भी समझाते हैं कि हे कन्या तुम ऐसी बात मत करना, तुम बड़ी दुखी हो जाओगी। लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। ये देखकर दुर्वासा मुनि कहते हैं कि तुम मेरे मित्र की पुत्री हो, तुम्हारे पिता से मेरा बड़ा स्नेह था, तुम्हारी माता भी बड़ी भक्त थी, तुम उनकी पुत्री हो, इसलिए तुम्हारे इस गलत व्यवहार से मैं क्रोध करके आपको शाप नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी आपने अधिक मास को रिजेक्ट किया है, त्याग दिया है, उसकी निंदा किया है, अविश्वास दिखाया है, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए उस कन्या का जो तेज था एकदम निस्तेज हो गई, एकदम बुढ़ी लड़की जैसी हो गई, बड़ी दुखी हो गई, उसका दुख और बढ़ गया। इसलिए एक बात ध्यान रखना कि अधिक मास के बारे में कभी गलत नहीं सोचना, अविश्वास नहीं दिखाना, श्रद्धा से इसके बारे में सुनना और इसके बारे में इसका व्रत पालन करना। तो फिर ये कन्या तपस्या करती है शिव जी को प्रसन्न करने की। तो शिव जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं क्या चाहिए बताओ, क्या वरदान मांगती हूँ? तो कहते मैं अकेली हूँ, असहाय हूँ, मेरे को स्वामी नहीं है, मुझे पति दो, 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 आई वॉन्ट अ हस्बैंड, आई वॉन्ट अ हस्बैंड, 5 बार बोलती हूँ। इतनी वो डेस्परेट रहती है। स्त्री का स्वभाव कैसे रहता है, उनको हमेशा आश्रय की आवश्यकता होती है। लेडीज नीड टू बी शेल्टर्ड, इज नॉट अननेचुरल, कोई कमी की बात नहीं, इज नॉट अ सेकेंडरी पोजिशन, ऐसा नहीं, बाय नेचर दे नीड शेल्टर। तो जब ये 5 बार पुकारती है तो अपने आप शर्मा जाती है, कहते मैंने 5 बार पुकारा पति चाहिए, तो शंकर भगवान ने कहा आपको 5 पति प्राप्त होंगे। तो बड़ी दुखी हो गई, बोले नहीं नहीं नहीं, आपके शब्द वापस ले लेना, जैसे आपके 5 बार बोलने का जो वचन आपका वापस आप नहीं ले सकते हैं, वैसे मेरा भी वरदान वापस नहीं होगा, क्योंकि हम देवता लोग जो बोलते हैं वो हो जाता है। और वो कहते हैं कि दुर्वासा मुनि मेरे अंश हैं, उनके द्वारा दिया गया उपदेश अगर आप मान लेते तो आज इस अवस्था में नहीं होते, लेकिन फिर भी दुर्वासा मुनि ने आपको माफ कर दिया है और अगले जन्म में आप द्रौपदी बनोगे। तो फिर द्रुपद राजा ने यज्ञ किया और यज्ञ के अंदर से याज्ञ सेनी के रूप में द्रौपदी प्रकट हुई। उसका जन्म जो है स्त्री पुरुष के संबंध से नहीं हुआ है। तो ये भगवान उसकी पुनर्जन्म की कहानी बताते हैं और कहते हैं कि इस जन्म में भी द्रौपदी ने बहुत कष्ट पाया है, उनके सभा में अपमान किया गया, उनके पतियों का अपमान किया गया, राज्य नष्ट हो गया और राज्य में जो मान सम्मान की स्थिति थी वो भी नष्ट हो गई, और राज दरबार से राजपुत्री होने के बावजूद भी इसके पैर नंगे पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे, वो जंगल में कंकड़ कांटे पत्थर से गुजरना पड़ रहा है, नंगे पैर से झोपड़ी में रहना पड़ रहा है, वो भी एक जगह लंबे समय तक नहीं रह सकते, कंदमूल खाने पड़ते, कोई पकवान नहीं खा सकते, कोई वस्त्र नहीं पहन सकते, कोई अलंकार नहीं पहन सकते, राजपुत्री होने पड़ती, बड़ा मेंटल फिजिकल सोशल हर प्रकार से कष्ट था उनमें। तो भगवान उनको बताते हैं कि अभी मैं यहां पर विशेष कारण से आया हूं इस समय, क्योंकि कुछ ही देर में अधिक मास आने वाला है, और अधिक मास का अगर आप पालन करोगे तो इस सारे जो राज्य नष्ट हो गया है, सम्मान नष्ट हो गया है, हाँ मूलभूत आनंद जीवन के जो है सुख सौभाग्य नष्ट हो गए हैं, आप पद भ्रष्ट हो गए हैं, घोड़ों में यहां पर एंजॉय कर रहे हैं और आप यहां जंगल में कष्ट भोग रहे हैं, जंगली जानवर के बीच में रह रहे हैं, रात दिन संकट होता है, भीम को जगह रहना पड़ता है, तो कभी भी हमला करते हैं कोई इंसान को खाने वाला प्राणी, उस समय युद्ध करके उनको मारना पड़ता है, इतना सारा भयंकर जीवन आप जी रहे हो, अगर आने वाले पुरुषोत्तम मास में आप व्रत रखोगे तो तुरंत आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा, सारा कष्ट दूर होते ही पुनः आपको राज्य प्राप्त हो जाएगा, सम्मान प्राप्त हो जाएगा, पद भी प्राप्त हो जाएगा, और आप पुनः अपने गौरव को प्राप्त करोगे। और इतना बोलकर बड़ी दया से भगवान ने उपदेश किया। इस समय द्रौपदी भगवान के बहन के रूप में थी, मतलब भगवान का स्नेह जो है भाई बहन का, हम जानते हैं उनका जो उंगली कट गया तो उन्होंने तुरंत अपना साड़ी फाड़ कर उनका उंगली बांध दिया, भगवान ने कहा कि ये दिन को मैं चुकाऊंगा, आपने एक इतना सा वस्त्र दिया है, मैं आपको इतना वस्त्र दूंगा, जरूरत के समय पर। तो उनका बड़ा प्रेम का रिश्ता था, सभी रानियां वहां पर खड़ी थी, यहां वहां देखने लगी भगवान का उंगली कट गया, कैसे काटे, कैसे उनको पट्टी लगाए, इससे तुरंत अपना साड़ी फाड़ के राजवस्त्र फाड़ कर पट्टी बांध दी, उनका प्रेम का रिश्ता था। तो दुर्वासा मुनि का रिश्ता तो आदर का था, उन्होंने अविश्वास दिखाया, लेकिन प्रेमी भगवान ने आते जब प्रेम से उनको उपदेश दिया तो वही उपदेश द्रौपदी मान गई, और समय आने पर यथावकाश युधिष्ठिर महाराज ने याद दिलाया सब पांडवों को, द्रौपदी को भी याद दिलाया, और बड़े चर्रे स्वरूप में उन्होंने पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन किया, और वैसे ही पालन होते ही उनके 12 वर्ष खत्म हो गए, 13 वर्ष भी खत्म हो गए, और तुरंत वो राज्य को प्राप्त हो गए, महाभारत का युद्ध हुआ, विजय हो गए, कम संख्या में होने पर भी, दुर्बल लगने पर भी, कौरवों के सामने बड़ी सेना के सामने कम सेना होने पर भी पांडव जो है विजयी हो गए, और विजय होने के बाद में राज्याभिषेक हुआ, युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन गए, चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद में राजवस्त्र पहनकर राजरथ पर बैठकर भीष्मदेव के दर्शन करने गए, भीष्मदेव भी संतुष्ट हो गए क्योंकि उनको पांडवों के बारे में चिंता थी, कष्ट हो रहा था उनको, और भीष्मदेव के मन में इच्छा थी कि मैं इन पांडवों को राजा बनने के राजा के रूप में देखना चाहता हूं, और ये कृष्ण भगवान जानते थे, तो उनको राजवस्त्र पहनाकर अलंकार पहनाकर हाँ एक मरने वाले व्यक्ति को दर्शन करने के लिए, जंगली हम लोग जिसको मिलने जाते हैं ना कभी तो सफेद कपड़े पहनते हैं, तो अलंकार नहीं पहनते, लेकिन फिर भी भगवान ने जानकर ये जानकर कि भीष्मदेव की मरने के पहले पांडवों को राजा बन के देखने की इच्छा थी, इसलिए राजरथ रहकर हाँ कैरियर ऑफ किंग सभी सैनिक आगे पीछे म्यूजिक के साथ में राज दंड लेकर रॉयल इंसिग्निया वो लेकर वो रणभूमि में गए, जहां पर हजारों लोगों के हाथ पैर सर टूटे हुए पड़े हुए, बीच में भीष्मदेव पड़े हुए, लेकिन फिर भी जैसे भगवान ने पूछा था क्योंकि वो भीष्मदेव का मंतव्य जानते थे, तुरंत भीष्मदेव बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, उन्होंने उपदेश किया, इस तरह से पुरुषोत्तम मास का व्रत का पालन करके पांडव अपने यश को कीर्ति को पुनः प्राप्त किए। तो ये इसकी कहानी है जो नारायण भगवान ने स्वयं नारायण ने नारद मुनि को बताया, और वो हमारे लिए पद्म पुराण में आज प्रस्तुत है, ये कथा पद्म पुराण में आती है और हमारे लिए बहुत उपलब्ध है। तो पुरुषोत्तम भगवान ने जो क्या क्या कहा मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, जो पुरुषोत्तम की कथा जो मैंने पहले आपको बताई वो भी भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु को बताई देवी के सामने, उसको भगवान कहते हैं कि हे विष्णु आपने इस अधिक मास देवी को मेरे पास लाकर बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके इसलिए आपकी कीर्ति बढ़ेगी, और ये महीना जो है ये बाकी के सारे पवित्र महीनों में जितने भी पवित्र कार्य किए हैं वो इसके सामने तुच्छ है, 1000 गुना लाभ मिलेगा चतुर्मास का व्रत करने पर भी, इस महीने में चतुर्मास का व्रत नहीं होता है, चतुर्मास के हटकर भाद्रपद महीना एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो अभी अधिक भाद्रपद होगा, इसके बाद में निज भाद्रपद होगा, इसलिए इस बार में क्या हो रहा है कि जन्माष्टमी के बाद में 15 दिन के बाद में राधाष्टमी होती है, इस बार 1.5 महीने के बाद में आएगी क्योंकि बीच में भाद्रपद अधिक मास आया हुआ है, तो निज भाद्रपद जो है वो उसके बाद आएगा, और अधिक भाद्रपद आज से शुरू हुआ है। तो आज से हमको व्रत का आरंभ करना है, इसका लाभ लेना है। वो कहते हैं कि मेरा जो गोलोक धाम है जहां पर आप अभी आए हो दिल्ली को लेकर, वो तपस्या करके प्राप्त नहीं होता है। अगर कोई सोचेगा तपस्या करूंगा, त्याग करूंगा, विरक्ति प्राप्त करूंगा, जंगल में जाऊंगा, परिवार छोड़ दूंगा, धन दौलत छोड़ दूंगा, मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, इससे प्राप्त नहीं होता है। वो कहते हैं कि पुण्य कार्य करके मेरा धाम प्राप्त नहीं होता है। पुण्य कार्य करके स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, लेकिन मेरा दिव्य धाम जो है ये प्राप्त नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं कि कोई सोचता होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करके मेरे धाम की प्राप्ति होगी। ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकती है, मेरे धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके बाद वो कहते हैं कोई सोचेगा कि मैं व्रत रखूंगा, फास्टिंग उपवास करूंगा, इंद्रियों पर काबू रखूंगा तो भगवान की प्राप्ति होगी, और नहीं प्राप्त होगी। लेकिन केवल पुरुषोत्तम महीने का व्रत जो करेगा वो करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति होकर मेरे धाम की प्राप्ति आसानी से हो सकती। जैसे भगवान के नाम का महिमा का वर्णन किया गया है कि जो निरपेक्ष हृदय से भगवान के नाम का कीर्तन करेगा वो सारे कर्मों के बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। वो कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास के महीने के व्रत के पालन करने को सर्वोत्तम तपस्या कहा गया है। बाकी तपस्या जो हम करते हैं वो सर्वोत्तम नहीं है, क्योंकि वो केवल ब्रह्मलोक तक हमको ले जाते, लेकिन पुरुषोत्तम मास में की गई वही तपस्याएं सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर देती है। अल्टीमेटली हमारा पर्पज क्या है जीने का, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द लॉर्ड, भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाए, भगवान हमें देखें, भगवान हमें देखकर हमें कृपा करें हम पर और हमें अपना बना ले। इसी जीवन का उद्देश्य ही है, और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। बाकी हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे अन्य देवताएं हमारी ओर आकर्षित हो जाए, जो और कोई व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित हो जाए, ज्ञान धन दौलत इज्जत यश प्राप्त करके सारे विश्व के लोग हमारे पास बड़े सम्मान से देखते हैं, लेकिन उससे प्राप्ति कुछ नहीं होती। देवता लोग देखेंगे तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन फिर दोबारा छोड़ के वहां पर आना पड़ेगा। लेकिन भगवान अगर हमारे ओर देखते हैं, अगर अदाकंद हमारे ओर देखते हैं, तो जन्म मृत्यु का श्रृंखला जो है चेन टूट जाता है और उनके पास चले जाते, उनके चरणों में आश्रय प्राप्त करते। जो उनके चरणों में आश्रय प्राप्त करता है वो इस दुनिया के हर भय से निर्भय हो जाता है। नो फियर कैन टच हिम, किसी प्रकार का भय उस व्यक्ति को टच नहीं कर सकता, ना भूत प्रेत का, ना डर का, ना बीमारी का, ना कोई संकट का, ना जन्म मृत्यु का भय, कोई भय उस व्यक्ति को छू नहीं सकता। अखंड निर्भयता प्राप्त करता है इस जीवन के अंदर और इस जीवन के बाद भी अंदर। तो इसलिए वो कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो पुरुषोत्तम मास के गौरव को समझकर हृदय से इस व्रत को पालन करता है। और अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, दुर्दैवी व्यक्ति है, दुर्भाग्यपूर्ण है, जो मेरे नाम का जप नहीं करता, जो इस महीने में दान नहीं देता है, जो इस महीने में कृष्ण और उनके भक्त का आदर सम्मान पूजन नहीं करता है, जो इस महीने में ब्राह्मणों की ओर अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, उनके साथ वैर करता है, उनकी निंदा करता है और पुरुषोत्तम व्रत का पालन नहीं करता है, वो निश्चित रूप से नरक में जाकर कष्ट पाता है। ऐसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम गौलोकेश्वर अपने मुख से बताते हैं, क्योंकि भगवान जो कहते हैं वो ब्रह्म परम वाक्य है। इसलिए वो कहते हैं कि हाउ कैन अ पर्सन मेक हिज लाइफ सक्सेसफुल, कोई व्यक्ति अपने जीवन को यशस्वी कैसे कर सकता है अगर वो पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं करेगा। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगा हुआ है और उसे पुरुषोत्तम मास के प्रति कोई आदर नहीं, आकर्षण नहीं है, इस पवित्र महीने की वो निंदा करता है, को रिजेक्ट कर देता है, वो एक नर्क के लिए बेस्ट कैंडिडेट है, इज अ बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन वो जो है। इसलिए सारे पुरुष सारे मनुष्य जाति को इस व्रत का पालन करें। अभी हम चर्चा करेंगे कि इस अधिक मास का गौरव क्या क्या, और वो बता दिया, आगे बताते हैं कि ये कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय मंत्र है। माघ वैशाख कार्तिक इससे भी अधिक इसको पूजनीय माना गया, इसको साक्षात लक्ष्मी देवी पालन करती है। वैकुंठ में रहने पर भी अधिक मास का व्रत लक्ष्मी देवी पालन करती है, ध्यान में रखना इस बात, लक्ष्मी देवी विष्णु की पत्नी है, उसे कोई जरूरत नहीं कुछ करने, फिर भी वो पुरुषोत्तम मास का महिमा जानकर स्वयं इस व्रत का पालन करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सबसे बेस्ट मंत्र है, और इसमें जो भी हमारे हाथ से अपराध होते हैं, जो भी गलतियां होती है, वो भगवान पुरुषोत्तम मास के व्रती को माफ करते हैं। हमारा बेस्ट अपॉर्चुनिटी, कोई अनजाने में गलती भी हो गई तो भगवान उसको माफ कर देते। और पवित्र धाम में जैसे वृंदावन धाम है, नासिक है, तीर्थ क्षेत्र है, श्रीरंगम है, जगन्नाथपुरी है और मायापुर क्षेत्र है, इससे लेने में जो लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ, स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन जो प्राप्त होता है, उससे हजार गुना लाभ कहीं पर भी पुरुषोत्तम मास व्रत करने से प्राप्त होता है। और एक सुंदर लाभ ऐसा है, अभी दुर्वासा मुनि बता रहे हैं उसका गौरव क्या, वो तो कहते हैं कि पवित्र इस महीने में जो पवित्र क्षेत्र में जाकर नदी में स्नान करता है वो तुरंत ही पाप रहित हो जाता है, सारे पाप जितने भी अनंत जन्म के पाप होंगे वो सब नष्ट हो जाते हैं। बाकी महीनों में व्रत करने से जो लाभ होता है वो इस महीने के व्रत के लाभ से 1/16 हिस्सा होता है, मीनिंग अधिक मास के व्रत का लाभ बाकी सारे महीनों के व्रतों से 16 गुना अधिक होता है, ये सारे दुर्वासा ने बताया। तो इस महीने वो कहते हैं पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और भगवान के नाम का बड़े ध्यान से, डिस्ट्रैक्शन न होते हुए ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। फिर वाल्मीकि मुनि एक बहुत सुंदर बात कहते हैं इसके बारे में, ये बड़े बड़े संत है, ये परम संत है, सिद्ध पुरुष है। वाल्मीकि मुनि ने भगवान का जन्म होने के पहले रामायण लिखा, ऐसे श्रेष्ठ ऋषि है, चिरकालीन ऋषि है, ये सत्ययुग में भी थे, त्रेता में भी है, और द्वापर में भी जब भागवत जी का कथन हो रहा है शुकदेव द्वारा वहीं पर भी है थे, सुबह घर में चर्चा हो रही थी वाल्मीकि मुनि कहाँ से आ गए, वो तो चिरकालीन है, वो हर युग में रहते हैं, व्यास मुनि, वशिष्ठ मुनि, भारद्वाज मुनि, वाल्मीकि मुनि सब जगह रहते हैं, चिरकालीन है। तो वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का व्रत का पालन करता है उसके अंदर सारे देवता निवास करते हैं, जस्ट इमेजिन, सारे देवता और सारे पवित्र तीर्थ स्थान उसके शरीर में निवास करते हैं। यू बिकम द अबोड ऑफ बॉडी प्लेस, यू बिकम वॉकिंग पिलग्रिमेज सेंटर। एनी वन हु फेथफुली परफॉर्म्स कार्तिक व्रत पुरुषोत्तम मास व्रत विल गो टू वृंदावन, गो टू वृंदावन। दारू मुनि कहते हैं कि बड़ी आसानी से कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है, बहुत आसानी से, अगर कोई पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करे, और तत्क्षण एक ही क्षण के अंदर उस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाए। और नैमिषारण्य के जो साधु हैं वो सब गौरव सुनते उसके बाद में बताते हैं कि भक्त के जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती है, निस्वार्थ इच्छा होती है, अपने स्वार्थ को त्याग करने के बाद भी भक्त के हृदय में बहुत सारी इच्छाएं होगी कि भगवान को मैं फूल अर्पण करूं, मैं भगवान के लिए भोजन करूं, वैष्णवों को बुलाऊं, भगवान के विग्रहों को ऐसे श्रृंगार करूं, ऐसे करूं, बहुत सारे भगवान के विषय में उनकी इच्छाएं होगी, लोगों का उद्धार कैसे करूं, बहुत सारी इच्छाएं होगी। और नैमिषारण्य के ऋषि कहते हैं कि भक्त के हृदय में जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका पुरुषोत्तम मास को व्रत को पालन करना है। क्या आपके हृदय में भगवान के आनंद के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान के भक्ति में जो भी इच्छाएं आपने रखी होगी वो सारी इच्छाएं पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से पूर्ण करें। अभी पुरुषोत्तम मास का व्रत का पालन कैसे करना चाहिए सबको जरूरी है समझना, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग कलयुग के जीव हैं, हम लोग वाल्मीकि मुनि की तरह 60,000 वर्ष तपस्या नहीं कर सकते, विश्वामित्र मुनि की तरह 60,000 ईयर्स का ध्यान नहीं कर सकते, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं, हम परिवार को छोड़ नहीं सकते, धन दौलत छोड़ नहीं सकते, हमारा व्यवहार नहीं छोड़ सकते और कुछ भी त्याग नहीं सकते, और ना कलयुग में कोई साधन है भाई भगवान की पूजा भी करने तो फूलों में कुछ भी नहीं, हाँ बॉम्बे में कहीं भी फूल करने कुछ वो आती नहीं, उसको आगे तो बहुत कम आती है, अभी रंग रहता है बस, घी अगर चाहिए उनके लिए दीपक जलाने के लिए तो घी भी शुद्ध नहीं मिलता है, और ब्राह्मण चाहिए अच्छा पूजा करने के लिए तो ब्राह्मण भी सब लोग ऐसे टीवी देखने वाले बीड़ी पीने वाले, अरे हमने देखे ऐसे ब्राह्मण जो पूजा करने के लिए घर पे आते हैं सत्यनारायण की पूजा करने के लिए, मुझे बोलते हैं कितना स्कोर हो गया, सेंचुरी पूरा हो गया, ऐसे पूछते हैं, और मुझे मंत्र बोलते हैं मामा बोलो हाथ डालो पानी छोड़ो बोलते हैं, बोलते हैं कितना स्कोर हो गया, ऐसे सब ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मण तो वो है जब मंत्र बोलेगा ना तो उसके मंत्र से यज्ञ कुंड में अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, ये ब्राह्मण उसके उसके जीवन में इतनी पवित्रता है, इतनी शुद्धि है, इतना पवित्र है, इतना तपस्या का बल है ज्ञान का बल है कि उसके मुख से मंत्र उच्चारण होने के तुरंत बाद माचिस काटने की जरूरत नहीं है। बारिश में माचिस गीली हो गई है, 50 माचिस को हिला चुका है, लेकिन अग्नि नहीं पैदा हो रही है। वैसा नहीं है, वो नाम बोलते ही तुरंत अग्नि चल, ऐसा ब्राह्मण में नहीं है। हाँ, हमारे पास वो एकाग्रता में नहीं है कि भाई 108 यज्ञ करे 40 दिन तक, उसको पेशेंस चाहिए था, बोले ऑफिस जाना है, टाइम की तरह इतना बड़ा व्रत नहीं कर सकते, पैसा लेकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि योग्य व्यक्ति है ही नहीं अवेलेबल। कितना सारा कलयुग का जो सिचुएशन है वो प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, फिर भी हमको पुरुषोत्तम मास का व्रत करना है, ध्यान रखना। ये मत समझना कि हम सत्ययुग के लोग नहीं है, हमारे अंदर अच्छे गुण भी नहीं है, हमारे अंदर एकाग्रता भी नहीं है, हमारे अंदर कोई ज्ञान भी नहीं है, पेशेंस भी नहीं है हमारे अंदर, तपस्या क्या करेंगे, दिन में 3 बार नहीं खाएंगे तो हमको तकलीफ होती है, एकादशी के दिन बहुत कष्ट होता है, एकादशी क्यों आई, किसने पैदा की एकादशी, अरे ये मत खाओ वो मत खाओ, धान नहीं खाना है, चपाटी नहीं खाना है, राइस नहीं खा सकते हैं, बहुत कष्ट वाला बात है। लोग वेट करते हैं कभी एकादशी सुबह कितना बजे कितना बजे, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक है, तो 6 बज को 1 मिनट पहले तैयार रहते हैं, सब रेडी रखते हैं उपवास तोड़ने के लिए। हाँ, वेट करते, 4 घंटा कोई वेट नहीं करते हैं। अगर वो उपवास का लास्ट समय छोड़ने का 10:28 होगा तो तब तक कोई वेट नहीं करता है, 6:01 सबका उपवास टूट जाता है। तो ऐसी हमारी अवस्था है कलयुग की। हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हमारी आयु कम है, हमारी स्मृति इतनी कमजोर है कि हमको अगर आपको पूछेंगे कल सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, आपको याद नहीं आएगा, याद आएगा कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, कल सुबह कौन से कपड़े पहने थे, आपको नहीं याद आएगा। अरे पूछूंगा 10 साल के अंदर 5th स्टैंडर्ड में जब थे तो फर्स्ट डे स्कूल में कौन सा खाना डब्बा लेके गए थे, आप टिफिन में क्या लेके गए थे, इम्पॉसिबल। लेकिन पहले युग में ऐसा नहीं था, सब कुछ याद रहता था, उनका नाम था श्रुतिधर, दे विल रिमेम्बर एवरीथिंग, वॉट एवर दे हियर वॉट एवर दे विल डू दे विल रिमेम्बर एवरीथिंग। लेकिन हमारी ऐसी भी अवस्था नहीं है, ये सबको देखकर भगवान ने सारा जो मामला है बड़ा आसान कर दिया है, तो ये लोग कुछ करने के योग्य नहीं है, ना यज्ञ कर सकते हैं, तो ब्राह्मण ही नहीं है, ना ध्यान कर सकते हैं, ना मंदिरों की पूजा कर सकते हैं, तो कोई साधन भी अवेलेबल नहीं, सब कंटामिनेटेड है यहाँ पर, सब क्या कहते हैं उसको दोषपूर्ण है, फुल ऑफ फॉल्ट्स, झगड़ा करते रहते हैं लोग कलयुग के। हमें ट्रेन में खुले में रहते बाजू ऑटो करा छोटा सीट चाहिए, बोला बॉडी बड़ी दिखते नहीं क्या आपको, बिग बॉडी ऐसा जगह नहीं है, आप हिल नहीं सकते, गुस्सा आ जाता है उनको, धक्का लग गया तो बोले फर्स्ट क्लास में जाओ, इधर क्यों आए, कारण क्या है, तुरंत गुस्सा करते हैं, तुरंत झगड़े पे विपद होता, हमेशा त्रस्त रहते हैं, ऑलवेज डिस्टर्ब रहते हैं, तो झगड़ा करने के लिए उद्युक्त रहते हैं, तुरंत झगड़ा हो जाता है, किधर भी आप कोई कारण जरूरत नहीं झगड़ा करने की, छोटा सा कारण रहता है थोड़ा दंगा हो जाता है, छोटा सा कारण कलयुग का लक्षण है, थोड़ा मंद भाग्य है सब लोग, नो फॉर्च्यून, कितना भी अच्छा बताओ समझ में नहीं आता है, दिमाग इतना कमजोर है, भोजन इतना कमजोर है, दिमाग कमजोर होगा ही ना, खाना इतना शुद्ध नहीं मिल रहा है, गटर के बाजू में जो सब्जी बनती है वो सब बिकी जाती है, वो लोग खाते हैं, क्या सत्व मिलेगा हमको, तो ना दिमाग के लिए पोषण है, ना आत्मा के लिए पोषण है, ना शरीर के लिए पोषण है, ना वातावरण अनुकूल है, इतना सब होने पर भी कलयुग की सब लोग पूजा करते हैं, इतना दुर्गुण, कलेर दोषे निधिर राजन, दोषों का निधि है, सागर है, इतने दोष है इसके अंदर, फिर भी अस्थि एक महान गुण, इसके अंदर एक महान गुण है, जिसकी वजह से सारे युगों के संतगण जो है, वाल्मीकि मुनि भी, वशिष्ठ मुनि भी, भारद्वाज मुनि भी, सब लोग कलयुग की पूजा करते हैं, खाली मानते नहीं है, पूजा करते हैं, वर्शिप कलयुग, क्योंकि कीर्तना देव कृष्ण से, इसके अंदर ऐसा एक नुकसान भगवान ने बताया है कि जो सत्ययुग में 1,00,000 साल ध्यान करके प्राप्त नहीं हो सकता, त्रेता में 10,000 साल तक यज्ञ करके प्राप्त नहीं हो सकता, द्वापर में 1,000 साल तक मंदिरों की पूजा करके प्राप्त नहीं हो सकता है, वो लाभ कलयुग में केवल कुछ साल भगवान का नाम लेकर प्राप्त हो सकता है, तो सत्ययुग के संतों को प्राप्त नहीं है वो लाभ, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम का लाभ बहुत कम समय में, देखो आप 1,00,000 साल कहा और 70 साल के लिए, आपका लाइफ टाइम जो है 100 होना चाहिए, शुरुआत 100 से हुई थी, अभी कम से कम होकर 58 साल भी एवरेज लाइफ टाइम आया हुआ है, इतने समय में अगर आप भगवान के नाम का जप करेंगे हृदय से तो आपको वो प्राप्ति होगी, तो सत्ययुग में 1,00,000 साल ध्यान करके भी नहीं प्राप्त हो सकता, ये कंसेशन भगवान ने दिया है हमको, देखा क्योंकि भगवान का एक ऐसा एक कहते हैं भगवान को एक भोग है कृपा करने का रोग बहुत आतुर रहते हैं कृपा करने की।
जैसे ही वो युग आगे बढ़ता है और लोग धीरे 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 पति 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 बन जाते हैं, सत्य से देवता में थोड़े काम पति, फिर उसके बाद में और पति, और कलयुग की शुरुआत में कहते हैं कि जो 100% सद्गुण थे वो 25% पे आ जाता है शुरुआत में, और फिर धीरे और कम 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 होके एंड में जीरो हो जाता है। जब भगवान देखते हैं कि लोगों के दुर्गुण बढ़ रहे हैं, लोगों की योग्यता कम होती जा रही है, लोग बिल्कुल अयोग्य बनते जा रहे हैं, यूजलेस बनते जा रहे हैं, तो भगवान और अधिक और अधिक और अधिक कृपालु बन जाते हैं। इसलिए वो कलयुग की पतित अवस्था देखकर क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका उनको प्राप्त करने का प्रस्तुत करते हैं, मतलब इनकी कोई योग्यता नहीं, चलो अपने आप को मेरे नाम के ध्वनि में अर्पण कर देता हूं, और केवल मेरा नाम लेंगे ना ये बस, और कोई जरूरत नहीं, भले मेरा नाम लो, जहां पर बैठे हो वहीं बैठे रहो, जो कर रहे हो वो करते रहो, परिवार में रहो, धन कमाते रहो, जो भी आपकी अवस्था है, पढ़ी लिखी अवस्था है या तो अनपढ़ अवस्था है या दुर्बल कोई भी अवस्था हो, जहां हो वहीं रहो स्थान स्थित, और मेरे नाम का जप करो बस, बाकी सारा मैं संभाल लूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स, इतना ही करना है हमको। और ऊपर से कार्तिक दिया हुआ है, ऊपर से पुरुषोत्तम मास भी दिया हुआ है, इसलिए हमको निराश नहीं होना है हमारी अवस्था को देखते हुए, हमको देखना है कि निराश जैसे जो बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है जो किसी भी प्रतिकूल अवस्था में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, इज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो देखेगा कि कितना भी प्रतिकूल माहौल हो कैसे बाहर निकलूं, जितना साधन मेरे पास है, जितनी बुद्धि है, जितना रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसको लेकर कैसे बाहर निकलूं, वो व्यक्ति के लिए ये बहुत सुवर्ण संधि है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, भगवान का नाम जप करना और भगवान के नाम को प्राप्त करना। तो इसके सबसे बड़ा व्रत इसमें आ गया है, हम सब लोग गृहस्थ हैं, यहाँ पर कोई ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं है, वो तो वैसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन गृहस्थों के लिए खास करके इस महीने में ब्रह्मचर्य पालन करने का आदेश दिया गया, सेलिबसी, कीप अवे फ्रॉम अपोजिट सेक्स, इवन इन थॉट्स, इवन इन आईज एंड अट्रैक्शन ऑफ आईज, इंपॉर्टेंट व्रत कहा गया, मन को काबू रखना। सुबह जल्दी उठने के लिए कहा गया, ब्रह्म मुहूर्त में सूरज के उगने के कम से कम 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए, ये हमारे जो परम पूज्य महानिधि महाराज है, गारापुर में निवास करते, उन्होंने नोट्स दिया हुआ है हमारे लिए, तो पिछली बार आया था अधिक मासिक में उन्होंने प्रवचन दिया था, उसमें सारे भक्तों को ये आदेश दिया था, 1.5 घंटे पहले क्यों उठना है, 1/2 घंटा अपने स्नान नहाने के लिए, और 1 घंटा पूरा आपको मिलेगा सूर्य उदय के पहले भगवान के नाम का जप करने के लिए, इस महीने में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाए, आपको सब महीने में इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन जिस महीने में एक काम करके अगर 1,00,000 लाभ मिलता हो तो उस महीने में वो 1,00,000 अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, द सेम थिंग बिकम्स लैक ऑफ टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट। फिर भगवान के नाम का जप का जो हमारा नियम है, उसके हम लोग 16 माला करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का रोज करते हैं भाई, कोई भी महीना माला कर लेते हैं, तो इस महीने में वो सुबह ही करना है जितना हो सके, और अधिक माला जप करने का नियम स्वीकार करना है, कोई उसमें जोर जबरदस्ती नहीं कि आपको इतना ही करना है, लेकिन स्वेच्छा से अधिक माला जप करने का स्वयं निर्णय करना चाहिए, इट कुड बी 25, इट कुड बी 32, इट कुड बी 64, जैसा समय अवेलेबल है वैसा, तो मंदिर में फुल टाइम रहेगा तो वो 64 भी कर सकता है, हम लोग गृहस्थी हैं अपना काम धंधा भी करते हैं तो 25 कर सकते हैं या 20 कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हमारी माता जी आ गए ना, राधा राधा कांत आपके घर में विराजमान है, बड़े भाग्य की बात है, बड़ा कृपा की बात है ये, उनको रोज शुद्ध घी का लैंड अर्पण करना। अभी देखिए मैं तो भी पढ़ के बताऊंगा आपको, आपको ध्यान में आएगा कि हरे कृष्णा भक्त लोग रोज करते हैं, पुरुषोत्तम मास का वेट नहीं करते, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट यह है हमको याद दिलाने के लिए ये महीने में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुद्ध गाय का घी जो है उससे निपट भगवान को अर्पण करना चाहिए। तुलसी को जो पत्र है वो चाहे 21 हो या 51 हो या 108 हो या 1008 हो या आपको समय अधिक है तो वो जो तुलसी के पत्ते हैं बड़े प्रेम से कृष्ण भगवान के चरणों में आपको अर्पण करना चाहिए, भगवान का नाम लेते हुए उनके चरणों में तुलसी के पत्र जो है अर्पण करना चाहिए, बड़ी प्रसन्नता भगवान को होती है इससे, और खास करके ये व्रत बढ़ाया गया है। मंदिर की कम से कम 4 बार प्रदक्षिणा आपको करना है, सब आसान तरीके है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट,
यहाँ पर भी हम लोग ये पालन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का मंदिर का भगवान के विग्रह का चार बार प्रदक्षिणा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर गौरव की प्राप्ति होती है। आसान, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ कि इतने आसान तरीके हैं कि इसके लिए बुद्धि विद्या धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, कोई भी ये कर सकता है। यानी बड़े योग्य लोग आपके एक महीने के बच्चे को गोद में लेकर भी आप कर सकते हैं, बड़ी इजी थी, बच्चे को भी लाभ मिलेगा आपको भी लाभ मिलेगा। उसके बाद में तुलसी की पूजा और भगवान की आराधना, जैसे यहाँ पर आप पूजा करते हैं जो भी आपको मुमकिन है, में आरती करते होंगे या शायद एक बार भोग लगा देंगे तो प्रॉब्लम नहीं, जो आपका नियम है वो श्रद्धा से भक्ति भाव से करना है। और राधा कृष्ण को भगवान को सुंदर सुंदर सुगंधित फूल जो है, जैसे कि अभी गुलाब को कोई सुगंध तो होती नहीं यहाँ पर, तो अगर आप स्वर्गीय गुलाब का वर्णन सुनेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, तो यहाँ पर वैसे गुलाब अवेलेबल नहीं। तो यहाँ पर मोगरा को बहुत खुशबू अच्छी आती है, लिली को खुशबू अच्छी आती है, चंपा को खुशबू अच्छी आती है, सोन चंपा को आपको पता है सभी कौन से फूल को खुशबू वाले फूल यहाँ मिलते हैं, तो वो फूल आपको लाकर भगवान को अर्पण करते हैं। बाकी फूल भी ला सकते हैं लेकिन सुगंधित फूल जरूर लाना चाहिए। तो उसके बाद में ऐसा लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, श्रीमद् भागवत का पठन रोज करना चाहिए। खास करके बताया गया है वाल्मीकि मुनि द्वारा कि दशम स्कंद की जो कृष्ण लीलाएं हैं उसका पठन और श्रवण करना चाहिए। उसमें भी खास बताया है कि दशम स्कंद का जो 14वां अध्याय है, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, बालकों को बछड़ों को छीनने के बाद में जब पश्चाताप करते हैं, वापस लौटाते हैं उनको बालकों को बछड़ों को, उसके बाद में पश्चातापित होकर भगवान की स्तुति करते हैं। दशम स्कंद में 14वां अध्याय है, उसको कहते हैं बार बार पढ़ना। और भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है उसको रोज पठन करना है। अब ये सब एंड और है, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, मैं आपको एक वैरायटी दे रहा हूँ। इसमें महत्वपूर्ण है सबसे पहला बताया कौन है, ब्रह्मचर्य। सेकंड महत्वपूर्ण है भागवतम पठन और भगवत गीता पठन। और समय मिलेगा तो दिन में कभी भी सुबह या शाम को जब फ्री टाइम मिलता है तो भगवान के आनंद के लिए भजन करना चाहिए। जैसे भजन करता लेकर कुछ गीत गा सकते हैं, जगन्नाथ अष्टकम है, कृष्ण चौर अगर अष्टकम है, राधा माधव कुंज बिहारी ये भजन थोड़ा सा है, जो भी आपको अनुकूल लगे, टाइम है 5 मिनट का, तो भगवान के लिए गाना चाहिए इस महीने में। और इस महीने में सत्य वचनी और शांत रहने का प्रण करना चाहिए। इस महीने में अधिक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी वस्तु के लिए नॉट गेट डिस्टर्ब इन दिस मंथ, ट्राई एंड कीप पीसफुल। हाँ, जहाँ पर भी कुछ इरिटेटिंग प्रोवोकिंग कंडीशन है उसमें शांत रहने का प्रयास करें, किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। खास करके वैष्णवों के साथ कितना भी क्रोध आने का घटना होगी तो भी क्रोध नहीं करना चाहिए, ट्राई टू रिमेन पीसफुल। उसके बाद में किसी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मणों की, भक्तों की, संतों की, गायों की और शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए इस महीने में, और किसी से भी कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आई विल वॉन्ट टू हैव समथिंग फ्रॉम यू, समथिंग फ्रॉम यू, और आज कहते हैं अनलेस यू आस्क फॉर डोनेशन फॉर कृष्णा फ्रॉम देम इट इज फाइन, और खुद के लिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हो सके तो केले के पत्ते पर बैठकर, जमीन पर बैठकर भोजन करना चाहिए, हो सके तो। हमारे भक्ति हॉस्पिटल में बहुत केले के पेड़ लगाए हैं और साल भर में रोज ही केले के पत्ते में खाते हैं, तो आसान हो गया ना, लेकिन मार्केट में जाके आपको ला सकते हैं अगर मुमकिन है तो, बट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। और खुद के भोग के लिए कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मसाज लेना, तेल का मसाज, हाँ खुद के क्या कहते हैं इंद्रिय भोग के लिए, वो सब एक महीने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रति है ना, व्रति जो है वो जितना हो सके खुद को कम आनंद देने का प्रयास करता है। प्रति व्यक्ति वो है जो खुद का आनंद बाजू में रखता है और भगवान का आनंद को प्रधान बनाता है, उसको कहते हैं व्रति, इज अ व्रति पर्सनैलिटी। और एक इम्पोर्टेंट चीज है उसमें, इस महीने में व्रत रखना चाहिए, मतलब उपवास रखना चाहिए। अनेक प्रकार के उपवास के, आप चाहे एक दिन में अन्न का भोजन खा सकते हैं, बाकी फलाहार कर सकते हैं, या 2 बार अन्न खाएंगे थोड़ा थोड़ा और 1 बार फलाहार कर सकते हैं, या पूरा महीना फलाहार कर सकते हैं, जैसे आपकी क्षमता हो वैसे खा गए। खास करके अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इस व्रत को लेना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल यू टू कंसिडर योर हेल्थ एंड देन डू दिस फास्टिंग, बट फास्टिंग करेंगे तो इसमें बहुत लाभ है इसमें। और एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है अधिक मास के व्रत में, कि अधिक मास के महीने में अगर आप किसी पवित्र स्थान पर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल वृंदावन जाएंगे, नासिक जाएंगे, जगन्नाथ पुरी जाएंगे, और कहीं भी आप जहाँ भगवान का चिरंतन निवास है वहां पर आप जाएंगे, जहाँ भगवान ने लीला किया है, भगवान का लीला स्थलीय है, वहां पर जाकर वहां के कुंडों में, तालाब में या नदी में आप स्नान करेंगे, यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी के समुद्र में स्नान करेंगे जो पवित्र माना गया, जहाँ चैतन्य महापुरुष स्वयं स्नान कर चुके हैं अनंत बार, उस जगह पर स्नान करने का अनंत लाभ बताएगा। इसलिए हो सके तो इस महीने में एकाध बार आपको समय निकालकर किसी धाम की यात्रा करनी है। आप देखेंगे वृंदावन में जाएंगे आप ना, तो वृंदावन में इतनी भीड़ रहेगी, लोग धाम में जाएंगे, वहां पर दान करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएंगे, वहां पर गरीबों को गीता बांटेंगे और क्या क्या करते हैं इस महीने में, जो भक्तों को आनंद मिलेगा वो बहुत सारे कार्य करते हैं। वृंदावन परिक्रमा करेंगे, गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, बसाने की परिक्रमा करेंगे, दर्शन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, दान करेंगे ब्राह्मणों को। तो धाम वास जो है वो कार्तिक मास में जो तो धाम वास सब करते हैं उससे 1000 गुना अधिक लाभ अधिक महीने में धाम का निवास करने से होता है। तो प्रैक्टिकल क्या चीज है हमारे लिए, आप बॉम्बे में रहते हैं, हमारे पास सबसे नजदीक धाम कौन सा है, नासिक। नासिक में गोदावरी जी है, गोदावरी जो गंगा जी का स्वरूप है, तो भगवान के चरणों से निकली है एक गोदावरी, भगवान के चरणों से डायरेक्ट निकली हुई है, और एक गोदावरी वो है जो भगवान ब्रह्मा ने जब विष्णु जी का उपेंद्र यानी वामन भगवान का जो चरण ऐसा आया ना ऊपर सेकंड, पहले चरण से तो उन्होंने पाताल लोक और पृथ्वी को नाप लिया, सेकंड चरण से उन्होंने स्वर्ग लोगों को नाप लिया, तो ब्रह्मांड के एकदम कवरिंग में उनका चरण पहुंच गया, तो उनके बड़े उंगली से यानी कि बिग टो उसके स्पर्श होने से ब्रह्मांड को छेद हो गया, ब्रह्मांड जो अंडे के समान होता है ब्रह्मांड उसके कवरिंग में उनका पांव का नाखून रख के छेद हो गया, और वहां से भगवान के दिव्य लोक की नदी जो है गरजा नदी वी रजा रजगुण के जो पड़े हैं वो नदी का जल जो है वहां से प्रवाहित हो गया, वो एक जल है जो गंगा जी के रूप में प्रकट होता है, फिर वो जल इकट्ठा करके ब्रह्मा जी ने जो भगवान का चरण है उसका अभिषेक किया और वो जल जो कमंडल में जमा करके वो जल आगे जाकर गोदावरी के रूप में प्रकट हो गया। तो शिव जी ने उधर त्र्यंबकेश्वर में अपने जटाओं में धारण किया उसको, और फिर वहां जटाओं को मार मार कर पत्थर पर पहाड़ पर त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ पर गोदावरी को प्रवाहित किया। तो गोदावरी बड़ी पवित्र नदी है, तो 7 नदी है ना, गंगे यमुने चैव सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी, तो 7 नदियां अनंत पवित्र नदियों से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, जिसमें स्नान करने से सारे संचित नष्ट हो जाते हैं। और जब ये नदियां पवित्र धाम से गुजरती हैं, फॉर एग्जाम्पल यमुना जैसे जो जमुनोत्री है वहां से निकलती, वहां से वृंदावन तक जमुनोत्री से लेकर दिल्ली भी आती है, वहां से आगे भी चली जाती है, फिर वो आगे बढ़कर वृंदावन में प्रवेश करती है, तब तक कहीं भी आप स्नान करेंगे उसमें ताकि पाप सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जब वो वृंदावन में प्रवेश करती है तो पाप के साथ पुण्य भी नष्ट कर देती है, और पाप और पुण्य नष्ट करने के साथ साथ कृष्ण की भक्ति और प्रेम भी देती है, एडिशनल बेनिफिट। वैसे ही गोदावरी जब तक त्र्यंबकेश्वर से गुजरती है तो खाली पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब नासिक क्षेत्र में यहाँ पर भगवान रामचंद्र भगवान ने निवास किया था तो वहां पहुंचती है तो वो पुण्य भी नष्ट कर देती है और प्रभु के चरणों में भक्ति प्रदान करती है। तो ये सब लाभ जो टेक्निकलिटी है सभी डिटेल्स है, समझना बहुत जरूरी है, और इसलिए समय निकालकर हमको जाना चाहिए और भक्ति भाव से नदी में स्नान करना। नदी में स्नान कैसे करना चाहिए, पहले नदी को क्योंकि नदी देवी है, वो देवी नदी के रूप में जल के रूप में अपनी सेवा देती है पृथ्वी पर भगवान के आदेश के अनुसार, इसलिए उस नदी को सामान्य जल नहीं समझना चाहिए, अरे गंदा है लोग यहाँ पर तो कितना कपड़ा धो रहे हैं क्या कर रहे हैं, इस दृष्टि से उनको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि कपड़ा धोने पर भी या गंदा करने पर नदी का जल अपवित्र नहीं होता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति जो है पोटेंसी जो है वो कम नहीं होती, इट इज इंटरनली प्योर। अगर आपको बाहर से गंदी दिखाई पड़ती है उनके लिए वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र है, नंबर 1। नंबर 2 उसके पास जाके दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उसकी कृपा याचना मांगनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और फिर पानी में उतरने के पहले 3 बार उसका 3 बिंदु सर पर धारण करना चाहिए, 3 बार कितना भी गंदा पानी हो श्रद्धा से और भक्ति भाव से 3 बार उसका सेवन करना चाहिए, मुख में ईश्वराय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः और गोविंदाय आचमन करना चाहिए, फिर प्रणाम पूर्वक नम्रता से अपने पैर नदी में डालने के पहले प्रणाम करके कृपा याचना करके फिर नदी में प्रवेश करना चाहिए। और नदी में स्नान करते हुए कोई मजा मस्ती नहीं करना चाहिए, तीन बार डुबकी लगाना चाहिए। अगर ब्राह्मण हो तो गायत्री जप कर सकते हैं उसके अंदर, और डुबकी लगाकर सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए अपने साथ, और फिर बड़े श्रद्धा से बाहर निकलना चाहिए। ये नदी के स्नान की विधि है। ऐसा स्नान करने से उसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। या तो आप कूद रहे हैं, डाइव लगा रहे हैं और कुछ मजा मस्ती करके पानी उड़ा रहे हैं, तो फिर वो स्विमिंग पॉइंट की तरह हो गया, आपने उसको पवित्र नदी से स्विमिंग टैंक बना दिया, तो लाभ भी उतना ही आपको कम होगा। लाभ होगा लेकिन अपने ही कर्मों से आप उसका लाभ कम करते जा रहे हैं। इसलिए श्रद्धापूर्वक काम करना चाहिए। दान पुण्य का क्या विधि है? दान जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। एक दान तमोगुणी है, कोई ताश खेल रहा है जुआ और जुआ में हार रहा है तो उसको आप धन दे रहे हो, कोई तुम पैसा दे लो और थोड़ा खेलो, दया से आप उसको हेल्प करें, वो तमोगुणी दान माना गया। उस दान करने से नरक में जाते। एक रजोगुणी दान है, ये किसी लाभ के हेतु देता है कि मेरा नाम हो, मैं 1,00,000 रुपए दूंगा, मेरी माँ का नाम यहाँ पर स्कूल पे लगना चाहिए, अमुक तमुक देवी माध्यमिक शाला, मतलब दान दे रहे लेकिन उसके पीछे कुछ हेतु है, मेरा यश होना चाहिए, मेरी कीर्ति होनी चाहिए, मेरा पुण्य बढ़ना चाहिए, स्वर्गवास मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। और एक दान सात्विक दान होता है, जो सत्पात्री जरूरतमंद सात्विक लोगों को दिया जाता है, ब्राह्मणों को देते हैं। और एक होता है दिव्य दान, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सब व्याख्या भगवान ने स्वयं गीता में दी। दिव्य दान क्या होता है? जो केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए दिया जाता है। द ओनली पर्पज बिहाइंड द डोनेशन इज टू प्लीज द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। आपको देखना है कि आपको इस महीने में दान देना है श्रद्धा से, क्योंकि आप अगर इस महीने में दान देंगे तो आपको 1,00,000 गुना लाभ होगा अन्य समय में दान देने के लिए। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था, ट्राई टू टेक द बेनिफिट ऑफ टाइम। समय का प्रवाह है वो किस तरह चल रहा है उसको देखकर आपको कार्य करना चाहिए। समय अनुकूल है तुरंत कार्य करना चाहिए, समय प्रतिकूल है तो रोक लेना चाहिए। तो समय जैसे हवा का झोंका होता है वैसे होता है, जहां पर चल रहा है उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना है, तो आप प्रगति कर सकते हो और इस दुनिया में रहते हुए भी जन्म मृत्यु का सागर जो है उसको पार कर सकते हो। तो इसलिए इस महीने में दान करना है तो ऐसे कहा गया कि श्रीमद् भागवतम का दान करना सबसे बढ़िया है, भगवद गीता का दान करना सबसे बढ़िया है, तो स्क्रिप्चर दान करना बहुत जरूरी है ब्राह्मणों को, योग्य ब्राह्मणों को। हाँ, वैसे ब्राह्मण नहीं, टीवी देखने वाले, बीडी पीने वाले नहीं, जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, प्रामाणिक है, भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं, ऐसे प्रामाणिक भक्तों को ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन करना चाहिए। उसमें चावल की खीर जरूर होनी चाहिए, बड़े प्रेम से उनको दक्षिणा देनी चाहिए और वस्तु भी दान देनी। वस्तु में बहुत सारी लिस्ट है, 16 वस्तु बताई गई है। कुछ कुछ वस्तु ऐसी है जैसे वस्त्र है, धन है, गाय है, सोना है और चांदी है, जूते हैं, छतरी है, आईना है, तिलक है और स्क्रिप्चर है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्षमता हो, श्रद्धा जितनी हो आपकी, सश्रद्धा सक्षम अवस्था में जितने हैं उतना आपको करना चाहिए। ये दान के बारे में हो गया। और बेस्ट डेज जो है इसे बताए गए हैं, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा और अमावस्या। इसमें भी इन चार दिनों में दान करेंगे तो उसका अधिक लाभ मिलेगा। और ये लाभ मैं बार बार दोहराता हूं, ये लाभ भौतिक नहीं होगा, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्वर्गवास और समाधि, फेम, धन, भ्रांति नहीं है, ये केवल आध्यात्मिक संपत्ति, दैवी संपत्ति बढ़ाने के लिए दान को। उसके बाद में ये सब बता दिया मैं आपको, ये बहुत 23 पॉइंट हो गया बाय द वे जो मैंने आपको बताया। तो इसमें से आपको विचार करके ये तय करना है कि आपको क्या मुमकिन है, क्योंकि इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो आपको वही करना है, ऐसा नहीं है। आपको जो समय कि आपके जो जीवन की शैली है, जो आप जी रहे हैं, आपके जीवन में आपको क्या मुमकिन है वो आपको करना है। इससे मैंने बेस्ट क्या बताया, एक तो ब्रह्मचर्य का लोग पालन कर सकते हैं, शास्त्र का अध्ययन जरूर करना है, हरि कथा का श्रवण। इस दिन 7 दिनों में हरि कथा का सप्ताह क्यों आयोजित किया गया है कि अनायासी मेरे मुख से हरि कथा बोली जाएगी, उसके लिए मैं तैयार करूंगा, खुद पढ़ूंगा, आप लोग सुनेंगे। तो इस महीने में हरि कथा श्रवण करने का बहुत महत्व आध्यात्मिक उन्नति का ये स्रोत है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि भागवत जी, क्योंकि सारे शास्त्रों में जो श्रीमद् भागवत है ये सर्वश्रेष्ठ माना गया, बाकी सारे वेद, उपनिषद, पुराण जितने भी है उसमें सबसे श्रेष्ठ भागवत को माना गया। वेदों के अगर वेदों सारे जितना वैदिक ज्ञान है जो पुराण, इतिहास, उपनिषद के रूप में उपलब्ध है, उस वेदों के पेड़ के अंदर सबसे आखिरी और सबसे परिपक्व फल जो है वो श्रीमद् भागवत है, क्योंकि हरि का गुणगान इसके अंदर, हरि के भक्तों का गुणगान इसके अंदर, तो सबसे जीव की आत्मा के लिए सबसे कल्याणकारी। बाकी शास्त्र का ज्ञान भी तीन गुणों में होता है, कोई सत्वगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है। वो तमोगुण से आदमी को रजोगुण मिलाता है कुछ शास्त्र सुनने से, कुछ शास्त्र रजोगुण से हमको सत्वगुण मिलाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत जो है, भगवद गीता ये दो शास्त्र जो है, वो हमको सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण में ले जाते हैं जिसमें भगवान निवास करते हैं। सत्वगुण में देवताएं निवास करते हैं, विशुद्ध सत्वगुण में श्री कृष्ण परम भगवान जो है लीला पुरुषोत्तम गौलोकेश्वर, वो विशुद्ध सत्वगुण में निवास करते हैं। और इस गुण में जो शास्त्र है उसका श्रवण करने से हम भी विशुद्ध सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं, और स्थित होने के पश्चात उस गुण में जो भगवान स्थित है उनकी अनुभूति हमको अनायास से होने लगती है। भगवान यहां पर भी विराजमान, हम रजोगुण में रहेंगे तो हमारे लिए पत्थर के रहेंगे, हम सत्वगुण में आएंगे भगवान के नाम का जप करेंगे, चार नियम का पालन करेंगे, भागवतम सुनेंगे, तो जितना समय हम विशुद्ध सत्वगुण में रहेंगे उतना समय भगवान हमारे लिए साक्षात ब्रजेन्द्र होंगे। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन, आप स्वयं कृष्ण हो, यशोदा नंदन पुत्र हो, नंद महाराज के पुत्र हो, लीला कर रहे हो, वृंदावन बन जाएगा पूरा, श्री वृंदावन प्रकट हो जाएगा। प्रकट कैसे होता है? वो हमारी चेतना के अनुसार होता है। हमारी चेतना पापी होगी तो पत्थर के रहेंगे हमारे लिए, हमारी चेतना पवित्र हो जाएगी तो यही जगह श्री वृंदावन धाम के रूप में प्रकट अपनी लीला करेगी, अपने गौरव को महात्म्य को प्रकट करेगी यहाँ पर। तो इतना सुंदर मौका हमको मिला है, आज इसकी शुरुआत हो गई है, इसलिए आज ही चर्चा करना बहुत मैंने योग्य समझा, ताकि आपको विचार करने के लिए अभी 29 दिन मिलेंगे। आज तक ये तो समाप्त होने को आया, फिर भी 4-5 घंटे बाकी है। कम से कम आज के दिन समाप्त होने के पहले आप कागज में लिखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट ऑल यू कैन डू। और ऐसा कहा गया कि बीच में हमको महीने में अगर कोई संकट आता है या कोई इमरजेंसी आती है तो ही आपका व्रत आप तोड़ सकते हो, आपको इतना उसका पनिशमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जितना हो सके उतना 20 महीने में आपके व्रत को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। परंतु में जब ये पूरा महीना आप व्रत करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार तय करेंगे और उसको पालन करेंगे, अंत में आपको फिर दोबारा ब्राह्मणों को बुलाना है, भोजन कराना है, उनको रचना देनी है और भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करनी है। ये दो कार्य करने से आपका व्रत जो है वो समाप्त हो जाएगा, मतलब व्रत सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और फिर आगे निज भाद्रपद चतुर्मास शुरू हो जाएगा, बड़ा पवित्र है, 5 महीने मिलते हैं, 4 महीने के बदले 5 महीने मिल रहे हैं, फिर चतुर्मास का व्रत आपको पालन करना है, फिर कार्तिक आएगा, हरिभक्ति विलास पद्म पुराण के अनुसार उसका व्रत करना है, और भगवान का ज्ञान दर्शन सेल हो हमारे लिए, हाँ बड़ी आसानी से भगवान अपने आप को वहां पर अपने हमको मिलने के लिए आतुर रहते हैं, ही ऑफर्स आवर हिमसेल्फ टू अस वेरी इजीली इन दिस पॉइंट। तो मैं आपको सबको शुभकामना देना चाहता हूं और ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग बड़ी बुद्धि से, समझदारी से, इच्छा से, हाँ शक्तिपूर्वक, बलपूर्वक जो भी आपके बस में है, जरूर ही छोटा हो या मोटा हो व्रत आपको करना है, और मन में एक ही भाव रखना है, क्योंकि हमारे मन में ना एक होता है पेंडुलम, वो ना ऐसे ऐसे घूमता है यहां से वहां, कभी वो पुण्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, कभी भक्ति करता है, फिर कोई पुण्य, कोई धनवान, कोई धन दौलत, कोई इज्जत, कोई शोहरत, कोई पद की उन्नति प्राप्त करने का प्रयास करता है। हमारा जो है ना मन ऐसा हमें दोलायमान रहता है, एट समटाइम्स वी वांट सम बेनिफिट, समटाइम्स वी वांट सम प्रमोशन, सम मनी, सम हेल्थ वी वांट, और कुछ लोग भक्ति करते हैं। तो इस समय उस पेंडुलम को जो है ना दौलत को एक जगह रखना है। एक जगह मतलब कहां पर रखना है? कुछ भी आप करेंगे तो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे, ये आपको इस महीने में मन को निश्चित बताना है कि कुछ भी हो जाए कोई भी भौतिक प्राप्ति के लिए इस महीने में कार्य करने का प्रयास नहीं करना, जितना हो सके 100% इतना भी हो सके उससे कम नहीं जाना है, भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयास करें। मैंने एक बार मंदिर में बहुत लोग व्रत ले रहे थे, कॉम्पिटिशन लगा रहा हूँ, बच्चे लोग बोल रहे थे कि हम आइसक्रीम छोड़ेंगे, चॉकलेट छोड़ेंगे, हम स्वीट नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, कोई बोलते समोसा नहीं खाएंगे, मुझे बहुत प्रिय है वो, कोई बोलता ऐसे करूंगा, कोई बोलता वैसे करूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से लोग ने व्रत लिया। तो किसी ने महाराज से पूछा, हमारे परम पूज्य राधानाथ परम महाराज से, आपका व्रत आपने क्या पॉलिसी दिया कार्तिक महीने को? उन्होंने कहा कि जो मैंने 40 साल पहले, मतलब उस समय 31 साल पहले मेरे गुरुदेव हाँ कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद को मैंने जो वचन दिया था कि मैं 16 माला जप करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा, रोज प्रसाद खाऊंगा, रोज शास्त्र पढ़ूंगा और भक्तों के संग में रहूंगा, ए बी सी डी, ये जो मैंने वादा किया था उसको मैं इस महीने में अधिक अच्छी तरह से करूंगा। तो पॉइंट क्या है इसका, व्रतों की लिस्ट नहीं बनानी आपको, अरे मैंने 5 लिए, आपने कितने लिए, 7 लिए, आपने कितने, 9 लिए, ये इसमें उद्देश्य नहीं है। जो भी आप कर रहे हो उसको हृदय से करना, अगर आप कोई भी व्रत नहीं लेंगे इसमें से तो भी चलेगा, लेकिन हमारा मूल व्रत क्या है, मैंने पहले बताया ना कि सबने से ना ऐसे सारे कार्य है जो हमारे मंदिर में रोज होते रहते और भक्त लोग हमेशा रोज करते रहते, फॉर एग्जाम्पल चैंटिंग हरे कृष्ण रोज करते हैं, शास्त्र या तो भागवतम सुनते हैं या तो पढ़ते हैं, रोज करते हैं, प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं और वो भोजन करते हैं, रोज करते हैं, भगवान को फूल और तुलसी रोज अर्पण करते हैं, रोज उनकी आरती उतारते हैं, एवरी सिंगल डे, तो ऑटोमेटिकली आप कर ही रहे हैं, अगर आप भक्त हो तो कर ही रहे हैं, इस महीने में अधिक ध्यान को वो करना, अधिक तन मन धन लगा कर करना ताकि मन विचलित ना हो। तो ये सबसे बड़ा व्रत है, व्रतों की लंबी लिस्ट बनाने के बदले में वो व्रत जो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं जीवन में हमारे, तो जीवन भर के व्रत है, वो चाहे चैत्र चैत्र हो या माघ हो या कार्तिक हो या अधिक मास हो, वो हमको करना ही करना है, 16 माला चाहे रात का समय हो दिन का समय हो, 16 माला पूरे ही करने हैं, उसको इस महीने में अधिक एकाग्रता से, अधिक ध्यानपूर्वक, अधिक प्रेम से, अधिक श्रद्धा से, अधिक समर्पित भाव से करना है। और किस लिए करना है, कि ताकि समसिद्धि हरि पोषणम, भगवान इससे संतुष्ट हो जाए, ये भाव रहेगा तो आपका पुरुषोत्तमा सफल हो जाएगा, और ये भाव से वितरित हो जाएंगे तो उतना लाभ आपका दुर्गम हो जाएगा। इनके घर में विग्रह है, आपके घर में फोटो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया, जो आपके बाप का भाव है, जो आपका कॉन्शियसनेस है, उस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं, कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं हमारी चेतना के अनुसार, वो तो जैसे है वैसे ही है, वो बदलते नहीं है, वो रजोगुण में या तमोगुण में जाते नहीं है, वो हमेशा विशुद्ध सत्वगुण में ही रहते हैं, हम जब उस गुण में जाएंगे तो उस गुण में वो हमको प्रकट हो जाएंगे, इवन मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इज ऑलरेडी देयर। तो कैसे वो अधिक से अधिक समय तक हम इस गुण में रहेंगे, इसलिए वो मन की शांति, किसी का अपराध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, विचलित नहीं होना, एकाग्रता जब करने क्यों बताया गया, एटलीस्ट जैसे कि होता है ना वो तालाब होता है, उसको अगर पत्थर मारेंगे ना तो बहुत सारी गोल गोल लहरें उत्पन्न होती है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ वेव्स आ रहे हैं, लेकिन अगर जल में कोई बाधा नहीं आ रही तो जल शांत रहता है, और शांत जल में उसके तल में क्या है वो दिखाई पड़ता है, क्या पत्थर है कि मछली है आपको दिखाई पड़ता है। अगर जल विचलित हो गया तो जल के अंदर क्या है उसका दर्शन नहीं होता, हमारा मनुष्य जल की तरह है, अगर वो त्रस्त अवस्था में है, डिस्टर्ब है, तो भगवान जो हृदय में बैठे उसका दर्शन नहीं होता, तो मन शांत हो जाता है, तो मन के माध्यम से भगवान के हृदय में दर्शन हो जाते हैं, उनकी अनुभूति हो जाती है, उनको प्रयास करना है। जिस भक्ति के रास्ते में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उसको इस महीने के पवित्र समय के आधार पर कई सालों का प्रगति एक महीने में कर दें, इसलिए अगर शॉर्ट कट हूं विच यू कैन मेक प्रोग्रेस टू गॉड वेरी फास्ट एंड वेरी मच इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए ऐसा बेनिफिट भगवान ने दिया है, कार्तिक का महीना है, अधिक मास का महीना है, धाम वास है, मतलब एक तो अधिक मास है उसमें धाम वास है, उसमें नदी में स्नान है, उसमें शास्त्र अध्ययन है, उसमें ब्राह्मणों की सेवा है, उसमें भगवान की पूजा अर्चना है, मतलब एक के ऊपर एक आपको हजार गुना लाभ मिल जाएगा इससे। मैं आपको विनती करूंगा आप लोग अच्छी तरह से निर्णय लीजिए, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान के नाम का जब ध्यान पूर्वक, कुछ भी नहीं कर सकते हैं नाम पूर्वक ध्यान पूर्वक जप करने के बाद 5 मिनट के लिए उनके आनंद के लिए गाइए आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए, हम यज्ञा या संकीर्तना या प्राय यजंती ही सुबह दशा, बुद्धिमान लोग जो है और कुछ भी मुमकिन नहीं है, उनको शरीर ठीक नहीं है, अवस्था भी ठीक नहीं है, तो यज्ञाय संकीर्तनाय भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करके सब सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, सर्व सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो मैंने बड़ी लिस्ट भी बताई आपको, सबसे आखिर दर पर बताया है, अभी आपको सब चॉइस है। हाँ, क्योंकि ना फिर क्या आएगा, आई जस्ट स्टिल कांट डू इट, यू कैन स्टिल डू इट, बिकॉज सबसे आसान तरीका भी भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं, और आपको मुश्किल करना है तो भी आपके लिए मुमकिन है, जो आपको अनुकूल लगे वो आपकी।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो महापुर जी का प्रश्न ये है, सर पाप नष्ट होना और पुण्य नष्ट होना, क्या प्रश्न है आपका मुझे? हाँ, जब धाम में नदी प्रवेश करती है तो पाप के साथ में वो पुण्य में नष्ट कर देती है, और साथ में कृष्ण प्रेम भी देती है। मैंने कहानी भी बताई पहले, प्रभुपाद जी यमुना जी में स्नान कर रहे थे तो नदी में चले गए, तो भक्त लोग प्रभुपाद जी ने कहा कि यमुना जी में स्नान करने से पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ भक्त लोग नदी से बाहर भाग के आए, मुझे पुण्य उनको नष्ट नहीं करना है। तो फिर मैंने बताया कि पुण्य जो है वो भी हमारे लिए खराब है, क्योंकि पुण्य हमको दोबारा शरीर में प्रवेश करने के लिए मजबूर करता है, दोबारा शरीर धारण करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट जो है वो साइकिल चालू हो जाए। इसलिए पुण्य और पाप दोनों हमारे लिए हानिकारक है, और पवित्र क्षेत्र में नदियां जो होती है वो पाप के साथ पुण्य में नष्ट करके कृष्ण प्रेम को देती है, और पवित्र क्षेत्र के बाहर जहाँ वो जाती है वो भी तीर्थ क्षेत्र ही बनता है, जहां पर नदियां जाती है उनको वरदान है, वो उनके किनारे में जो भी गांव है, जो भी जितनी भूमि है वो सब पवित्र माने गए हैं उनके उपस्थिति के अनुसार, लेकिन बाहर पवित्र क्षेत्र के बाहर उनमें स्नान करने से केवल पाप नष्ट होती है, तो धाम का निवास करना चाहिए। और कोई प्रश्न किसी का? यस माता जी, माइक्रोफोन दीजिए उनको।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे एक बात मिस हो गई कि कौन से चार दिन आपने कहा बेस्ट डेज फॉर दान?
एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा और अमावस्या। और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं, 32 months 16 days के बाद में ही आता है इसका। मैंने जो कैलकुलेशन है सबसे बिगिनिंग बता दू, टेक्निकल कैलकुलेशन, ये वशिष्ठ संहिता के अनुसार 32 महीना 16 दिन और 8 घंटे के बाद में आता है। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ लूनर ईयर एंड सोलर ईयर, द डिफरेंस बिटवीन द टू 11 डेज पर ईयर अप्रोक्सीमेटली, जब 29.5 हो जाता है तो फिर अधिक मास पालन करते। एक और भी टेक्निकल पॉइंट था जो मैं बताने को मिल गया, वो ये है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि तिथियां लोप हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक ही दिन में आपको द्वादशी भी मिलती है और एकादशी मिलती है, एक दिन में दशमी मिलती है एकादशी मिलती है, कभी कभी तिथि लुप्त हो जाती है, तो जैसे क्षय तिथि, क्षय तिथियां 36 महीने में 30 हो जाती है, क्षय तिथि अठारह होकर मन मास होता है, अधिक मास होता है। एनीवे इट्स अ टेक्निकल कैलकुलेशन, और क्या प्रश्न? आज से शुरू हुआ, 16 सितंबर तक रहेगा, 16 सितंबर तक रहेगा आज से। ओके, और कोई प्रश्न है?
जैसे अभी मंदिर हम
लोगों
में जैसे
दीवार
के साथ
परिक्रमा कैसे?
फिर
आप
मन से
मंदिर में जाकर कर सकते हैं। अभी आपका प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है ना, ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है ना आपका, तो उसके लिए पर्याय भी है, तुलसी जी को रख के उसकी प्रश्न कर सकते हैं, उसको आप बाहर से खिड़की से कमरे में लेके आइए, स्कूल पे रखिए, उसको वस्त्र पहनाए, फूल अर्पण कीजिए और उसकी प्रदक्षिणा दीजिए।
आज मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम है तो मैं राउंड ज्यादा कर लू, तब मुझे
कम टाइम है व्रत का मतलब ये है, व्रत का मतलब ये है कि आपको वो तय करना है जो आपको तीस दिन पालन, ब्रथ इज नॉट फिजिकल. पूरे आज संडे है तो आपने शोषण कर लिया, विचार कर लिया, ब्रथ का मतलब आपको तय करना है मुझे 30 दिन तक आपको देखना अवेलेबल क्या है, कहाँ कहाँ वो ट्रैवलिंग कहाँ कर लिया, जो भी कुछ है उसमें आप क्या कर सकते हो, सोच समझ के आपको लिखना है कॉलेज और उसको पालन करना. भले वो छोटा सा हो कि 16 से एक बार में एक्स्ट्रा करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो पूरा करना है लास्ट तक. और वो व्रत के आगे जाकर आप उस दिन 25 भी कर सकते हो, लेकिन वो एक जो आपका व्रत का नियम है उसको करना ही करना है. दैट इज मीनिंग ऑफ व्रत. व्रत मीन्स कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट. हाँ वो प्रसाद हो गया ना, वो बांटो आप लोगों में, लोगों को बांट सकते हैं, उसको ड्राई कर सकते हैं, ड्राई करके लोगों को बाजू बांट सकते हैं. 108 हो या 1008 जैसे आपकी क्षमता हो, 51 हो, 21 आपको टाइम जितना है वो भगवान का नाम लेकर आपको चरणों में कृष्ण के अर्पण करना है. वो जो जमा होते हैं उनको अगर बहुत सारे हैं तो आप उसको एक डिब्बा में रखेंगे, वो ड्राई कर लेंगे उसको, और उसको लेते हुए दिन में एक पत्ता दो पत्ता खा सकते हैं, इसका ग्रहण कर सकते हैं, सब परिवार लोग ग्रहण कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं. जो आए तो घर में कोई आएगा, कोई धोबी आएगा, दूध वाला आएगा, सबको दीजिए. हाँ वितरण कीजिए उसको, प्रॉब्लम साल भर रखिए, जिंदगी खाइए उसको. हाँ एकादशी तो हम लोग 12 महीने चौबीस एकादशी करते रहते ना, छोड़ना ही नहीं चाहिए. जो बात अलग महीनों में कर रहे हैं वो तो आपको करना ही करना है, उसमें एक्स्ट्रा आपको इसमें ऐड करें तो भी वो पुरुषोत्तम व्रत बन जाएगा. उसमें आप कभी नहीं कर सकते हैं, जो आप बाकी टाइम कर रहे हैं वो इसमें कैसे नहीं कर सकते. मतलब ये इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंस. जो आप बाकी महीने में करके बेनिफिट ले रहे हो उसका आपको हजारों लाभ इस महीने में मिल रहा है, तो क्यों नहीं करना चाहिए. इट्स लाइक 1000 एकादशी इफ यू डू इट इन दिस मंथ, व्हाई नॉट डू इट वन टाइम ओनली, और एक कष्ट में बहुत सारा लाभ, लेस इन्वेस्टमेंट मोर बेनिफिट्स. और किसी का कोई प्रश्न है? लुक्स लाइक एवरीबॉडी इज गेयर्ड अप टू मेक अ लिस्ट बिफोर स्लीपिंग टुडे. ओके सो आई एंड हियर. श्री श्री राधा कांत भगवान की जय.